नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जत कीर्तनम जत स्मरणम जत इच्छणम जत वंदनम जत श्रवणम जत अर्पणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातलया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे भगवान श्री जगन्नाथ देव के इस क्षेत्र में और भगवान शिवलिंग राज्य के इस घर में श्रीमद् भागवतम कहने का मुझे सौभाग्य आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। इस मंदिर के अध्यक्ष आत्मारायण प्रभु बहुत प्रेम से हमें निमंत्रित किया और श्री कृष्ण जी बाजला जिन्होंने सब तरह से हम लोगों की बातों को रखा, प्रेम से बुलाया, उन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। भगवान कृष्ण उनकी मती रहे, सुखी रहे। और आप सभी भक्तों को जो इस भुवनेश्वर मंदिर के अस्थाई भक्त हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी की, कृष्ण बलराम जी की सेवा में लगे हुए हैं, प्रचार करते हैं और अन्य भी भक्त जन जो विभिन्न स्थानों से और इस उत्कल क्षेत्र से गांव से आए हुए हैं, सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। भगवान कृष्ण अपने प्रेम गए अपने समझें, ये भगवान जगन्नाथ जी से विनती करता है। इस पर कोई निश्चित नहीं हो पाया कि कौन कथा कही जाएगी, भगवत का कौन सा प्रसंग कहा जाएगा। मैं रास्ते में पूछा, आत्माराम जी ने पूछा कि आप कौन सा प्रसंग कहेंगे, हमने कहा कि आप कौन सुनना चाहते हैं। तो कोई निश्चित नहीं कर पाया, ठीक है आप जो परमिशन करेंगे वही अमृत पिएंगे हम। तो हमारा भी कुछ स्पेशल रुचि है, तो वही मैं कहूंगा, कई जगह कई स्कंधों की कथा कहानी होती है, तो मेरी यहाँ पर इच्छा है दसवां स्कंध से कहानी। दसम स्कंध का मतलब है भगवान श्री कृष्ण जो परब्रह्म है, और स्वयं भगवान है उनकी लीला। यहाँ पर हमें याद है कि मैंने पूरा किया था, ब्रह्मा जी बछड़ा चुराए थे और बछड़ा चुराने के बाद हमने स्तुति किया था भगवान की, तो स्तुति के केवल 8 श्लोक पूरे किए गए थे, उसके बाद वो कथा नहीं हो पाई थी। माता देवभूति की कथा हुई थी और कथा, तो मैं 15वें अध्याय से प्रारंभ करने की सोच रहा हूँ। जब कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ पहली बार गोचारण के लिए ब्रज से निकले, इसके पहले वे वत्स चारण करते थे। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया था, कार्तिक के शुक्ला अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम वन में दूर दूर तक जा करके गोचारण प्रारंभ किए। इस कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ कर रहे हैं, वहां से मैं ले रहा हूँ इस कथा। श्री सुकौवाच ततश्च पौगण्डवयः श्रुतौ व्रजे बभूव तुष्टौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समुपगैः वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः श्रीशुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा ततश्च, इसके बाद वत्स चारण के अनंतर ही पौगंडवयः श्रुतौ, श्री कृष्ण और बलराम दोनों कुमार अवस्था पार करके पौगंड अवस्था में स्थित हुए ब्रजे ब्रज में बभूवतु हो, और दोनों भाई हो गए पशुपाल सम्मत, पशुपालन में सम्मत। नंद आदि गोपों ने पशुपालन करने में सम्मति दी, अथवा गोपों में सम्मत। गास चारयन्तो गणों को चराते हुए सख भी समम सखाओं के साथ पदई ही अपने चरणों से, चरणों की छाप से, चरण चिन्हों से वृंदावन, वृंदावन को पुण्य पावन अतीव अत्यधिक चक्रतुः करने लगे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कुमार अवस्था की लीला को कहकर ब्रह्मा जी के स्तुति को पार करके अब भगवान की गोचारण लीला को कह रहे हैं। 1 से 5 वर्ष की अवस्था को कुमार अवस्था कहते हैं और 5 से 10 वर्ष की अवस्था को पौगंड अवस्था कहते हैं। और 11 से 15 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहा था। तो श्री कृष्ण वास्तव में अभी बच्चे हैं, बलराम जी भी बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने उसी कम उम्र में ही पौगंड अवस्था के धर्म को पूरा पूरा प्रकट कर दिया है। लगभग 9-10 वर्ष की अवस्था में जो रूप होता है, जो बल होता है, बुद्धि होती है, वो दोनों भाइयों में विकसित हो गई। वैसे तो कृष्ण और बलराम बल के निधान हैं और बुद्धि के अक्षर स्रोत हैं, फिर भी लीला में वो लोग कहा करते थे अपने पिताजी से, नंद बाबा से, कि बाबा हम अब बहुत बुद्धिमान हो गए हैं और बल भी बढ़ गया है, हम गाय चला सकते हैं। कई बार वो दिखाते थे और शरीर में वास्तव में सुंदरता, बल, बुद्धि आदि का उन्मेष हो ही रहा था, दिखा रहे। नंद बाबा उनको कभी भी स्वीकृति नहीं दे रहे थे वन में जाने के लिए। गांव के पास ही थोड़ी दूर पर लोग बछड़ा चराते थे और गाय चराने के लिए तो दूर जाना पड़ेगा, इसलिए नंद महाराज कभी भी स्वीकृति नहीं दिए और यशोदा जी तो सुनना ही नहीं चाहते थे। क्या जरूरत है इन लड़कों को गाय चराने की, जिस घर में हजारों हजार नौकर हैं, सेवक हैं, तो वे क्यों गाय चराना जाएंगे। लेकिन कई समस्या आ गई। समस्या यह थी कि जिन बछड़ों को श्री कृष्ण चराए थे, गोवत्सों को, तो छोटी छोटी गाय बाछी और बछड़े धीरे धीरे सयाने हो गए, तो उन्हें अब वन में भेजा जाने लगा। निश्चित हुआ कि इन बछड़ों को और जो छोटी छोटी बाछी थी वो अब गाय हो गई, तो उन लोगों को भेजना चाहिए वन में। लेकिन कृष्ण ने जिनको चराया था वे बछड़े वे बाछियां वे लोग जा ही नहीं रहे थे वन में। कितना भी लोग हांकते थे या वन में ले जाने दें, लेकिन हुंकार भरते रहते थे, बोलते रहते थे, कृष्ण के घर की ओर देखते थे और वो चलते ही नहीं थे। और भी समस्या आएगी, अन्य घरों के जो लड़के थे, बच्चे थे, वे भी अब वन में जाने के योग्य हो गए थे। उनके घर के लोग कहते थे कि अब गाय चरा सकते हैं, तो वे बच्चे भी नहीं जा रहे थे वन में। वो कहते थे जब कृष्ण चलेगा तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। साक्षात परब्रह्म आनंद घन भगवान के साथ जो बछड़े चलाए थे, भगवान के साथ प्रतिदिन खेलते थे कई प्रकार के खेल, वे भगवान के बिना, कृष्ण के बिना कैसे वन में जा सकते थे। तो न तो बछड़े जा रहे थे और न तो गोप सखा जा रहे थे, बहुत बड़ी समस्या है। जब कृष्ण जाएगा तब जाए, नहीं तो नहीं जाएगा। और उनका तर्क बिल्कुल स्वाभाविक था, सबने स्वीकार किया, ठीक कहते हैं बच्चे, कैसे जाए। और उधर कृष्ण बारम्बार माँ यशोदा से कहते थे, माँ मेरे पास इतनी बुद्धि हो गई है कि मैं हजारों गायों को घेर सकता हूँ, और तुम जानती हो मेरे बांसुरी में कितना चमत्कार है, मैं बांसुरी से गाय चरा लूंगा, हमको मेहनत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा कहीं इधर उधर। माँ को कभी कह देती थी तुमको बुद्धि क्या हुई है, कुछ बुद्धि नहीं हुई, अभी तुम घर का मटका फोड़े थे, बर्बाद किए थे, तुम्हें कोई बुद्धि नहीं है, तुमको भय भी बहुत है, बल भी नहीं बढ़ाया, बिल्ली की आवाज सुन करके मेरे गोद में छिप जाते हो, तुम बुद्धि क्या है, बल क्या है। कृष्ण कह रहे थे बहुत बल बढ़ गया है। कभी कभी भगवान ऐसे भी कह रहे थे, तुमने देखा ना तृणव्रत को किस तरह से मारा, मैं कहते तृणव्रत को मारा, अरे वो तो दैव योग से आकाश से गिर करके मर गया, तुमने क्या किया। भगवान कहते थे पुतना को मैंने मारा था वास्तव में। माँ तो हंसती थी कि क्या बकवास कर रहे हैं, अच्छे वात्सल्य स्नेह की प्रगाढ़ता से माँ उनके ऐश्वर्य को नहीं समझ पाती। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि जैसे जमा हुआ घी है, मैंने पहले पिघला था और उसमें सोना डाल दिया गया, गोल्ड का टुकड़ा डाल दिया जाए नीचे, और बाद में घी जम जाए तो दिखाई नहीं पड़ेगा। घी अगर ठोस बन रहे जम करके तो सोना दिखाई नहीं पड़ता। तो सोना को उन्होंने एक ऐश्वर्य से उपमा दिया है। भगवान है वास्तव में ईश्वर, परमेश्वर, परब्रह्म, सबके ईश्वर है, स्वामी है, लेकिन जब स्नेह का घी इस तरह जम जाता है पूरा ठोस, तब उनका ऐश्वर्य दिखाई नहीं पड़ता। वही मां यशोदा यही चाहती थी कि हमारा बच्चा है और बहुत कमजोर शरीर का है और बुद्धि भी नहीं है, माटी खा लेता है, रहा माटी खा रहा है, उसको बुद्धि क्या है? और दूसरे के घर का जाकर के माखन चुरा रहा, दही चुरा रहा, तो कोई बुद्धिमान नहीं का है? घर में लाखों बउे हैं, सब है, लेकिन दूसरे का चुरा कर रखा। तो कृष्ण कहते थे माँ मैं गाय चराने लायक हो गया हूँ, ऐसे में जाऊँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये माँ अनुमति नहीं दे रहे थे। पर श्री बलराम जी इंसिस्ट हो गए, उन्होंने कहा कि माँ ये बछड़े नहीं जा रहे हैं, गौवें नहीं जा रही हैं, कोई नहीं जा रहा है, बच्चे भी नहीं जा रहे हैं, तो जाने दो कृष्ण को, आखिर घर में पड़ा पड़ा क्या करेगा, मैं रहूँगा ना, मैं देख रेख इसकी करता रहूँगा। तो माँ ये बात सुन करके तैयार हो गई और श्री बलराम जी को उसने कहा कि देखो इसको धूप में मत घूमने देना, कोई भी फल खाना चाहे इसको पेड़ पर मत चढ़ने देना, झाड़ पर इसको मत चढ़ने देना, इसको फल खाने का बहुत शौक है। माँ जो सोचा पाती है फल इसको बहुत पसंद है। एक दिन फल बेचने वाली आई थी तो घर से अनाज लेकर दौड़ा हुआ गया, अनाज तो सब गिर गया, लेकिन फिर भी फल वाले ने इसको फल दे दिए, फल खाने का इसको शौक है। कोई भी फल देखता है बस मैं चढ़ूंगा तोड़ूंगा ऐसा कहता है। तो इसको कभी भी झाड़ पर मत चढ़ने देना और कहीं भी किसी कुंड में या जमुना में इसको स्नान मत करने देना, डूब जाएगा, बच्चा है, ऐसा हो जाए बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है वैसे कृष्ण की रक्षा करना है, कई तरह से आसान। और ये जो प्रसाद दे रहे हूँ, जो भगवान विष्णु का भोग प्रसाद दे रहे हूँ, दही भात अचार और माखन रोटी, इसको एक एक घंटे पर खिलाते रहना, कभी भूखा न रहे बन में। माँ जो सुधा इस तरह श्री बलराम जी को कहती थी, और कभी इसको गाय घेरने के लिए मत कहना कि जाओ गाय हाथ लाओ या ये करो, कभी मत कहना। ठीक है बलराम जी, ठीक है ठीक है। तो बलराम जी जब ये गारंटी लिए सब किए कि हाँ मैं कृष्ण की रक्षा करूँगा, इसको कोई परेशानी नहीं हुई, तो माँ जो सुधा ने कहा कि देखो पहला दिन दोपहर ही आ जाना है, ज्यादा मत घूमना, जल्दी गवों को लौटा करके आ जाना है, थका मार रहा है। कृष्ण हंसते थे, फिर भी उनका रक्षक श्री बलराम जी थे तो उनको प्रसन्नता हो रही थी, ठीक है बड़ा भाई साथ में रहेगा तो हमें कठिनाई नहीं होगी, उनको जाने दो जाने दो जाने दो। तो कृष्ण और बलराम चल रहे हैं, स्पेशल गौओं की पूजा की गई और शिक्षण दिया गया भगवान को कि ऐसे गाय चराना है, ऐसे रहना है, रहना है, नंद बाबा आदि गोप सब सिखा रहे थे कि इस वन में जाना, वृंदावन में जाना, वृंदावन तो पूरे ब्रजमंडल को ही कहते हैं, तो वहाँ जाना, लेकिन ऐसे रहना है, इस स्थान में गौओं को घेरना, यहाँ बैठना है, यहाँ खेलना है, सब जगह गुफा में पहाड़ में इधर उधर मत जाना। नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो भैया के साथ ही रहूँगा, बलराम के साथ ही रहूँगा। ठीक, सब कुछ सामान दिया गया कलरा करने के लिए, वन में भोजन करने के लिए सामान दिया गया, बना बनाया सामान प्रसाद, इसको लेकर कोई चल रहा, वहाँ से शिव सुखदेव संचालन करते हैं। ततश्च पौगंड वयस्त ब्रजे बभू पुस्त पशुपाल सम्मतव, पशुपाल सम्मतव का अर्थ है कि दोनों भाई पशुपालन के योग्य मान लिए गए गोपों द्वारा। अथवा पशुपाल समत पशुपालों के द्वारा जो लोग पशुपाल किए थे, गौ को चराए थे और चराते थे, बड़े 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 जो गोप थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, कृष्ण को काफी बुद्धि है, बल है, गाय चरा सकता है, हम लोग साथ में जा ही रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। उन लोग तो चाहते ही थे कृष्ण हमारे दल में आ रहे हैं। तो इस तरह पशुपालन में उनको अनुमति मिल गई, दोनों भाई चल रहे। बहु अपुष्ट पशुपाल सम्मत तव कृष्ण बलराम पशुपाल सम्मत बभुवत, पशुपालन के योग्य मान लिए गए। और तब गाश्चार्यंतो सखभी समम पद वृंदावन पुण्यमति चक्रतु, तो दोनों भाई सखभी समम अपने सखाओं के साथ गाश्चार्यंतो गौरों को चराते हुए घूमने लगे ब्रज में, दूर दूर तक वृंदावन में, और वृंदावन को पुण्य बनाने लगे। पुण्य का अर्थ होता है परम पवित्र, जो दूसरों को अपने सानिध्य मात्र से, नाम लेने मात्र से पवित्र कर दे, वह पुण्य वृंदावन नाम है। इस पर शंका होगी, कहा जाएगा कि क्या पहले से पवित्र नहीं था वृंदावन? नहीं नहीं, पहले से ही सब है, इस तरह से भगवान की नित्य लीला भूमि है। लेकिन गोचारण के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर घूम घूम करके अपने चरणों की छाप से अतीव पुण्य चक्र को अतिशय पुण्य करने लगे, अतिशय पावन ब्रजधाम को अतिशय पावन करने लगे। पहले बहुत कम दूर में गए थे भगवान, बछड़ा चराने के लिए छोटे से चरागाह आदि के मध्य रहते थे, लेकिन गाय चराने के लिए अब खुल करके घूमने लगा, जैसे गोवर्धन कामेवन और भी ताल वन, जैसे प्रसंग आएगा। जमुना के पश्चिम तट पर 7 वन हैं और पूर्वी तट पर 5 वन हैं, द्वादश कारण। तो जमुना के दोनों कछारों में दूर दूर तक जो वन थे उसमें भगवान गाय चराने लगे। एक दिन के वर्णन द्वारा और दिन का वर्णन किया जा रहा है, दोनों घूम घूम करके गाय चराने लगे। और गाय चराने में दोनों जब चरण विन्यास करते थे भूमि पर, इनके चरणों के चिन्ह से ब्रज भूमि अतिशय पावन हो गई। क्यों वृंदावन की इतनी महिमा है? क्योंकि भगवान का वो धाम है और वो वहां पर बिना पवित्राण के भ्रमण करते हैं, डायरेक्ट चरणों का स्पर्श ब्रज भूमि को मिलता है। अच्छा, और उसमें बैठते हैं, लौटते हैं, खाते हैं, सखाओं के साथ खेल करते हैं। इस कारण से वृंदावन धाम अतिशय पावन हो गया। दोनों भाई पावन करने लगा, चक्रतु चक्रतु का अर्थ है किए या करने लगे अपने चरणों की छाप से। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सौभाग्य उसी समय होता है जब भगवान यहाँ पर अपने चरणों की छाप छोड़ते हैं, चरण से चलते हैं। गोचारण में तो पैदल ही घूमना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई रिक्शा से या मोटरसाइकिल से गाय चलाने में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भगवान ने अपने पद चिन्हों से वृंदावन को अतिशय सुंदर अलंकृत परम पावन करने लगे। अतीव शैल सदेव समय कहते हैं अतीव पुण्य, अतीव का अर्थ होता है सीमा से बाहर, बहुत पवित्र, वर्णन नहीं किया जा सकता। वृंदावन कितना धन्य हो गया दोनों भाइयों के चरण चिन्हों से। दो एक श्लोक में कृष्ण बलराम का की लीला का वर्णन कर रहे हैं गोचारण के और उनके सखाओं के साथ, तो सबका समान रूप से वर्णन हुआ, कृष्ण का स्पेशल वर्णन इसमें नहीं हुआ। अब श्री सुखदेव गोस्वामी दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। तन्माधव वेणु मुदीर अमृत गोपैर्णदभिस्वजसोबलान्वित पशुं पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामः कुसुमाकरणं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण का वर्णन किया जा रहा है प्रधान रूप से, और का सहाय है, बलराम जी और गोप भी साथ में हैं, लेकिन भगवान के एक लीला का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, गोचारण करते हुए चले हैं वृंदावन में, तो वृंदावन में मुख्य विहार क्या है भगवान कृष्ण का, वेणु उदीरयन, बांसुरी बजाते हुए। ब्रज से चलो उसी समय से बांसुरी बजा रहे, ब्रज का अर्थ गांव और वन का अर्थ फॉरेस्ट, गौ को वन में ले जाकर चला रहे हैं। तो मुख्य लीला है वेणुवाद, वेणु उदीरयन। तत् तत्कार से वृंदावन, उस वृंदावन में श्री कृष्ण विहार करने की कामना से प्रवेश किए, बांसुरी बजाते हुए वेणु उदीरयन। उत का अर्थ ऊंचा, इरयन का अर्थ बजाते हैं, बहुत ऊंचा आलाप लेते थे बांसुरी बजाने। बांसुरी बजाने में कृष्ण को बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्राम करके बजा रहे हैं स्टेज पर, या अपनी मस्ती में अपने आनंद के उद्रेक में भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। तन माधव, श्री कृष्ण को यहाँ माधव कहा जा रहा है। माधव का एक अर्थ है बसंत भी होता है, बसंत। जैसे बसंत ऋतु आती है तो वन खिल जाता है, पुष्पों से भर जाता है, पत्ते पत्ते नए नए पत्ते आ जाते हैं, वृक्षों की शोभा बढ़ जाती है, वन की शोभा बढ़ जाती है। तो इसलिए से यह वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण मानो बसंत की तरह है, उनके आते ही वृंदावन खिल उठा। तो माधव का अर्थ होता है लक्ष्मी जी का भाव पति, लक्ष्मी पति श्री राधा रानी के प्रियतम भगवान उस वन में प्रवेश कर रहे हैं। वेणु उदीरयन, वेणु बजा रहे हैं, और वृत्त गोपर गण भी सदसों बलान्वित, और गोपों के साथ घिरे हुए हैं, अकेले नहीं है, उससे गोप है जो श्री कृष्ण को सामने से देखते हुए चलते हैं, नाचते हुए चलते हैं, झूमते हुए। गोचारण कोई कठिन काम नहीं है ब्रज में, चारों तरफ घास है, पानी है, बहुत सुंदर वन है, इसलिए चराने में गौओं का कोई परिश्रम नहीं है। मुख्य काम है विहार करना, बांसुरी बजाना, खेल कूद करना। ये गौएं तो अपने आप ही चल रही थी, इतना घास था, इतना सुंदर सुंदर वृक्ष और झरने, पानी की कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। पशु पुरस्कृत पशव्य माँ विषय, पशव्य पशुओं के हितकारी स्थान में, पशुओं के बिल्कुल योग्य स्थान पशव्य में भगवान ने प्रवेश किया बांसुरी बजाते हुए, और वे बांसुरी बजा रहे थे और गोप सब उनकी कीर्ति का गान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का क्षण क्षण में गान करते रहते थे, उनके सौंदर्य का या उनकी बीती हुई लीला का, ये वर्तमान में भी कुछ कैसे देख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे झूम रहे हैं, इसी को बच्चे गाते रहते थे। और उनके गान में भगवान वास्तव में बांसुरी से सहयोग करते थे, अथवा श्री कृष्ण गा रहे हैं कुछ अपनी भी लीलाएं गाते रहते हैं। भगवान को अपनी लीलाएं बहुत पसंद है, कृष्ण करुणा व्रत कहा जाता है। गुरुमंगल ठाकुर ने ग्रंथ लिखा, उनका श्लोक कृष्ण के कानों के लिए अमृत है, अथवा उसका एक अर्थ है कृष्ण ही अमृत है, कृष्ण ही अमृत है कानों के लिए अमृत है भक्तों के। पर वास्तविक अर्थ है कि कृष्ण के कानों के लिए कृष्ण कथा अमृत है। भगवान बांसुरी पर स्वर दे रहे हैं, अन्य बाजों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सखा ताली बजाते हैं, नुपुर बजाते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना नुपुर बजाते हैं और बांसुरी बजाते हैं, पैरों की झनकार करते हैं बांसुरी के साथ, और गोप सब जो दिव्य लोक के हैं, अप्राकृत जगत के हैं, बहुत सुंदर वाणी में कृष्ण की कीर्ति गाते हैं। तो ये गान चलता है, इसमें भगवान बहुत आनंद लेते हैं। तो तत्कुसुमाकरण वन, उस फूलों से भरे हुए वन में, कुसुमों के खजाने, कुसुम का अर्थ पुष्प, पुष्पाकरण फूलों के बगीचे में, जो फूलों से भरा हुआ है वृंदावन अनेक प्रकार के फूलों से, ऐसे वन में आविष्ट भगवान ने प्रवेश किया। क्यों क्यों प्रवेश किया? विहर तुकाराम, विहार करने की इच्छा। गोचारण है मुख्य लालसा नहीं है भगवान की, तो गोचारण तो करना ही है, लेकिन विहर तुकाराम विहार करने की इच्छा से उन्होंने वन में प्रवेश किया। किस प्रकार का विहार, इसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी 9 श्लोकों में किए हैं। बाद में क्या क्या विहार करते हैं वृंदावन, विहार करते कि भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद देने वाला वृंदावन धाम है। भगवान सुख लूटने के लिए, घूमने के लिए, अपने आनंद के लिए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते हैं तो झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए प्रवेश करते हैं, और सारे बच्चे भी गाते हुए झूमते हुए चल रहे हैं। गौएं अपना घास चरते हुए चलती रहती हैं, गौएं आगे आगे चलती हैं, कभी कभी गौएं बिखर जाती हैं इधर उधर, और बच्चे एक जगह खेलने लगते हैं, जम करके गीत होता है, कृष्ण नाचने लगते हैं, कभी कभी बारी बारी से नाचते हैं। इसका वर्णन आगे आएगा श्लोक में, कैसे नाचते हैं, क्या क्या क्रीड़ा करते हैं। विहर तो काम है, विहार करने की लालसा से भगवान ने वृंदावन में प्रवेश किया। ध्यान रखना चाहिए, गोचारण करने के लिए ही नहीं, विहार करने के लिए प्रवेश किया। कुसुमाकरण वर्णन इस बात को सूचित कर रहा है कि वृंदावन गह गह फूलों से भरा हुआ है, फलों से और घास से, पानी से। ये भगवान का अपना घर है पूरा ब्रज, जो प्राकृतिक जगत में स्वर्ग आदि को इतना सजा सकते हैं, फिर अपने धाम को भगवान ने कितना सजाया होगा। परम पुरुष पर ब्रह्म भगवान का स्टेज है वृंदावन। जैसे कोई व्यक्ति स्टेज पर नाटक करना चाहता है तो स्टेज को सजाया जाता है, इस तरह से वृंदावन को योग माया ने बहुत अच्छी तरह से सजाया है, जिस पर परम पुरुष खेलना चाहता है, जिसमें विहार करना चाहता है। भगवान विहार करने के लिए प्रवेश किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विहर तु काम, काम का लालसा, कामना, विहार करने की कामना से श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे। किसके साथ? पशुओं को आगे करके, पशु पुरस्कृत, पशुओं को आगे करके। पहले कहा गया गाय चराते हुए, यहाँ कहा जा रहा है पशु चराते हुए। इसका अर्थ ये है, श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के गौओं के झुंड में कुछ भैंस भी थी और बकरियां भी थी, तो हमेशा गाय गाय कहने से ही हो सकता है किसी को भ्रम हो कि भगवान को गाय चराती थी। बहुत सुंदर भैंस होती थी, हम लोगों के यहाँ जो अच्छी भैंस होती है तो उसको मथुराहिया भैंस कहते हैं, जो अच्छी क्वालिटी की भैंस होती है तो सब लोग मथुराहिया भैंस कहते हैं। तो भगवान ने भैंस को भी चराया है और बकरियों का, बकरियों को ये लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में। बकरी भी बहुत उपयोगी जानवर है, महात्मा गांधी जी तो बकरी का ही दूध पीते थे। भगवान बकरियों को चराया है, भैंसों को चराया है, इसीलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी सबका संहार करने के लिए, सबको लेने के लिए वो पशु शब्द का प्रयोग कर रहे, पशुओं को आगे करके चलो। पर विहार तो काम, पर विहार करने के लिए, खेलने के लिए। तन मन जुघोषालि मृग द्विजाकुलं महं मनः प्रक्षेपय सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्र गंधिना निरीक्ष रमतुं भगवान मनोदधे। पंत प्रवेश का वर्णन कर रहे हैं, अब प्रवेश करके क्या लीला कर रहे हैं, वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, कैसा वृंदावन है। मंज घोषाले मृग ध्वजाकुल, वृंदावन में जिनके बहुत मंजू स्वर हैं, बहुत सुंदर स्वर, मंजू घोष, घोष करते बोली, वृंदावन में जो पक्षी हैं जैसे कोकिल आदि, मयूर आदि, ये पक्षी और मृग, पशु और अली द्विजा, तमन जो घोषाले मृग द्विजा को, द्विज का अर्थ है पक्षी और मृग का अर्थ पशु और अली का अर्थ भावना है। बहुत सुंदर ध्वनि जिनकी है, जिनका कंठ स्वर बहुत अच्छा है, ऐसे भावों से पक्षियों से और पशुओं से वृंदावन आकुलम व्याप्त है। सब जगह पशु हैं और पक्षी और भावे जिनके जिनकी आवाज बहुत मधुर है। तन मंजु घोषाली मृगत द्विजाकुलम आकुलम व्याप्त, मंजु घोष सबके लिए ये शब्द लगेगा, मंजु घोष मृग, मंजु घोष द्विज और मंजु घोष आली। पक्षियों को द्विज कहा जाता है, उनका दो बार जन्म होता है, एक बार अंडे के रूप में उनका जन्म होता है और बाद में अंडे को फोड़ करके वे द्विज दो बार जन्म लेते हैं, चलो उनको द्विज कहा जाता है। हम लोग जनरली जानते हैं द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, लेकिन कई लोगों को द्विज कहा जाता है। तो वृंदावन के पक्षी, वृंदावन के भौरे और पशु बहुत सुंदर स्वर वाले, इनके स्वर से मंडित वृंदावन था, चारों तरफ पक्षियों का कलरव हो रहा था और भौरे गुनगुना रहे थे फूलों पर, और पशु भी बहुत सुंदर स्वर में बोलते थे, जैसे गाय भी बोलती थी या बछड़े बोलते थे या और भी जीव हरण आ जाते, बहुत सुंदर बोलते, मतलब इनके पशुओं की बोली से, भौरों की बोली से तथा पक्षियों की बोली से वृंदावन व्याप्त था, बहुत सुंदर लगा। वृंदावन का वर्णन ऐसे किया जा रहा है जैसे स्टेज का वर्णन, क्या क्या सजावट है ये, तो सबसे पहले किसी स्थान की महिमा का वर्णन जल और वायु से किया जाता है, जहां जल बहुत अच्छा है और हवा बहुत अच्छा है, उसको उर्दू में तो आबो हवा कहते हैं, आब का अर्थ है पानी, ये जो शराब शब्द है ना तो ये उर्दू शब्द है, शराब का मतलब होता है सड़ा हुआ पानी, शराब सड़ा हुआ पानी कुछ लोग पीते रहते अपना जीवन बर्बाद कर। तो जलवायु का वर्णन शिल सदेव संदेह कर, वृंदावन का वर्णन करते हुए उसकी शोभा सुंदरता का वर्णन करते हैं, महन मन प्रख्य पय सरस्वत वाते जुष्ट। वृंदावन में सरोवर है जहां तहां, भगवान के लीला का भी बहुत सुंदर तो सरोवर है, और जमुना जी है, मानसी गंगा जी नदी है, विविध सरोवर, आज भी आप जानते हैं वृंदावन में बहुत सरोवर है, कालक्रम से कुछ लुप्त हो गए हैं, कुछ प्रकट हैं, राधा कुंड भी पहले अप्रकट हो गया था, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन गए तो उन्होंने राधा कुंड को प्रकट किया, ये कथा है चैतन्य चैतन्य। तो इस तरह से कई कुंड प्रकट किए गए, जैसे विमल कुंड है कामवर में, गोवर्धन कुंड गोवर्धन जी में है, अंजौर में मानसी गंगा इत्यादि, इन सबको प्रकट किया गया। तो वृंदावन पूरा ब्रजमंडल कुंडों से भरा है, सरोवरों से, तो सरोवर का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सरोवर सरोवरों में जल कैसा है, महन मन प्रख्य, महात्माओं के मन के समान शुद्ध है जल, महन मन प्रख्य, प्रख्य का अर्थ है तुल्य, महात्माओं के वैष्णवों के मन के समान शुद्ध पवित्र जल। जल बहुत शुद्ध है, उसमें कोई आगंतुक गंदगी नहीं है और न तो स्वरूप से कोई खारा पर, कोई खारा नहीं और कोई गंदगी नहीं, कैसा शुद्ध है, कैसा शुद्ध है, जैसा महात्माओं का मन शुद्ध होता है उसे। इसमें भागवत में कई बार किसी सरोवर के जल का वर्णन किया गया है, तो यही कहा गया है महात्माओं के मन के समान शुद्ध, और महात्मा का अर्थ भगवान कृष्ण का भक्त, विष्णु का भक्त। जो वैष्णव होते हैं, भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेमी होते हैं, उनके मन में कृष्ण का चिंतन होता है, लीला का चिंतन होता है, और कोई भी कुविचार कचरा उनके मन में नहीं आता। तो महात्माओं के मन के समान शुद्ध पानी था सरोवर। तो और महन मन प्रख पय सरस वाते में जुष्ट सतपत गंध में, और अब सुगंध का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन के सरोवरों में कमल खिले हुए थे। जिस प्रकार महात्माओं के मन में कोई कचरा नहीं होता है, कोई दुर्वासना नहीं होती है, भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल या श्रीमुख कमल, हस्त कमल, ये सब रहता है, वृद्धि उनकी लीला है। इसी तरह वृंदावन के सरोवरों में कमल खिले हुए थे। जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार है और ध्यान करने का नाटक करते हैं, उनके तो हृदय अगर कमल जैसे, एक तो पानी ही गंदा है, उसमें कमल भी नहीं खिला है। जो लोग इस तरह से कहते हैं, निराकार कहने का मतलब उनका शून्य गंदा पानी भरा हुआ है उनके मन में। उनका मन बहुत गंदा होता है वास्तव में। कम कभी तो इतना दुर्विचार उनके मन में आता है कि मैं ही ईश्वर हूं, इतना गंदा विचार। माया बस परछिन जड़ जीव की इस समान, माया से ग्रस्त कोई जीव कैसे भगवान हो सकता है। माया जिसको पकड़ सकती है और देह में आत्मबुद्धि जन्माती है, तो वो व्यक्ति अपने को भगवान कहता है या अपने को बहुत बड़ा मान लेता है। भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करता, विष्णु से प्रेम नहीं करता। तो ये महान ऐसे लोगों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है यहाँ पर। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। महात्मा तो वे हैं पार्थ, हे अर्जुन, महात्मा वे हैं जो दैवी प्रकृति के आश्रित हैं, योग माया के आश्रित हैं, महामाया योग माया, और जो निकृष्ट प्रकृति के आश्रित हैं महामाया के, वे महात्मा नहीं हैं। महात्मा वे हैं जो अप्राकृत शक्ति के अधीन है, भगवान चिन्मय शक्ति। तो महात्माओं के मन के समान शुद्ध जल है, और उस जल में ये महात्माओं के मन की उपमा देने का मतलब ही है कि उस जल में कमल खिले हुए हैं, नील कमल, पीत कमल, लाल कमल, अनेक प्रकार के कमल और सौगंधिक कमल, और उन कमलों से प्रचुर सुगंध निकल रहा है, चारों तरफ सुगंध निकल रहा है। तो हवा का वर्णन किया गया, जल का वर्णन महात्माओं के मन के समान शुद्ध है, और हवा का वर्णन कि वह बहुत सुगंधित है, पूरा वृंदावन सुवासित है। वैसे अन्य भी बहुत से फूल हैं, परम सुगंधित फूल हैं, लेकिन सबसे प्रधान सुगंध किसका फैल रहा है, कमलों का। और हवा कैसी है, शीतल, क्योंकि सरोवर से टकरा करके वो हवा आ रही है, सरोवरों से, तो शीतल है और सुगंधित है। हवा के तीन गुण है, हवा बहुत जोर से ना चले, कम गति से चले और शीतल हो तथा सुगंधित। वृंदावन में पूर्ण सुगंध से युक्त हवा है, पानी बहुत अच्छा है और फल फूल भरे हुए हैं। ऐसे वन को देखकर निरीक्ष भगवान रंतुम मनोदल, अब रमण करने की मन में ठान ली है। पहले तो ये हुआ कि विहार को काम विहार करने की इच्छा से वन में प्रवेश की, और जब वन की शोभा भगवान ने देखा तो लिख रमतुम मनोदत है, अब रमण करने के लिए विहार करने के लिए मन में धर लिए, मन में धर लिए कि इसका मतलब प्लान करने लगे कैसे कैसे कराने। वन को देखकर रमण की इच्छा हुई, विहार की इच्छा हुई, एक सामान्य रूप से देख करके नहीं, प्रवेश किए सोच करके, वर्णन सुन करके, और जब वृंदावन की शोभा देखे तब तो गाय साय भूल गए चलाना, विहार ही कर रहे। भगवान सच्चिदानंद घन है, आनंद के मूर्ति है भगवान वास्तु, पर आनंद घन भगवान को भी वृंदावन आनंद देता है। वे आनंद लेने का मन में ठान ले, मनोदधे का अर्थ है कि मन में ठान ले। मनोदधे का अर्थ यह नहीं केवल मन में, बल्कि सखाओं से कहने लगे वैसे खेलेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे विहार करेंगे। उस विहार का वर्णन आ रहा है, सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फला प्रसूनोर्भरेण पादयः स्विषत् शिखान् विक्षवनस्पतिं मुदा अस्मिन् निवाहाग्रजमादि पुरुषः। जत्र तत्र जहाँ जहाँ कृष्ण जा रहे थे वृंदावन में, जहाँ जहाँ जा रहे थे तो फूलों से और फलों से लदे हुए वृक्ष अपने शिखाओं से भगवान का स्पर्श कर रहे थे, चरण का। जिधर जाते थे वृक्ष है और लताएं झुक झुक करके भगवान कृष्ण के चरण को छू रहे थे। स्पर्शत शिखा, भगवान श्री कृष्ण के चरण को छू रहे थे। ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो साधारण वृक्ष नहीं है वास्तव में, ये भगवान के परिकर हैं। वृक्ष योनि स्वीकार करके कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी पार्षद के भक्त के मन में इच्छा होती है कि मैं फूल अर्पित करता कृष्ण को, तो जेव ही चाहे त्यों वृक्ष बन जाएगा। वो चिन्मय देह होता है और कृष्ण को फूल अर्पण करना, फल अर्पण करना, कई प्रकार से ब्रज भाषा के पदों में वर्णन है। हे श्री कृष्ण, हमको वृंदावन में कदम्ब का वृक्ष बना दीजिए, जिस पर आप हाथ कभी कभी रख कर खड़े होते हैं, जिस पर चढ़ते हैं। हमें ब्रज की धूल बना दीजिए, जो जिससे आपके चरणों का स्पर्श हमेशा होता है। या कालिंदी का तट बना दीजिए, जमुना जी का तट, मैं आपके चरणों को छुआ करूंगा। इस प्रकार से बहुत बहुत मनोरथ के पद रचे गए। वृंदावन के वृक्ष सतत्र तत्र अरुणपल्लव श्रिया, अरुणपल्लव श्री, वृक्षों में नए नए लाल लाल पत्ते लगे हुए हैं। जब वृक्षों के पत्ते प्रायः देखिए तो शुरू में लाल जैसे रहते हैं, उनमें कुछ लालिमा रहती है, बाद में हरे हो जाते हैं। अरुणपल्लव श्रिया, लाल नए नए प्रवाल कोपल से वृक्षों को बहुत शोभा होती, और फल और प्रसून का उरु भार शाखाओं पर हो जाता। ऐसे स्वाभाविक ही वृक्ष की शाखाओं पर फल फूल लदे हुए थे, लेकिन भगवान जब आ रहे थे, पार कर रहे थे बलराम जी के साथ, दोनों भाई और सखा साथ में चल रहे थे, जहां जहां भगवान जाते थे वहां वहां वृक्ष झुक करके चरणों को छूते थे, चरणों को छूते। स्पर्शत शिखा पादयो स्पर्शन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दोनों भाई के, विशेष करके श्री कृष्ण के, सौ शब्द का प्रयोग है पर एक वचन। कृष्ण जहां जहां जाते थे तो वृक्ष उनके चरणों को छू रहे थे, और फल प्रसून उरु भार, फल और फूल के भार से उनकी शाखाएं झुक रही थी और कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श कर रहे थे। यह है दाम, इसलिए शिव सुखदेव गोस्वामी भार शब्द कह रहे। भार का अर्थ होता है भेंट देना। किसी बड़े व्यक्ति के पास जब जाते हैं तो उसको कुछ भेंट देते हैं, तो इसको भार कहा गया है संस्कृत में। न्यौछावर भार, तो फल और प्रसन्न, वृक्षों के पास क्या संपत्ति है, फल और फूल है। यदि विचार किया जाए तो वृक्षों के पास ही सबसे सुंदर वस्तु है जिसे भगवान चाहते हैं। गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक जल को छोड़ करके 75% चीज तो वृक्षों के पास ही है। भगवान चार चीज कर अगर हमको कोई ये देता है तो मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ, अगर कोई प्रेम से दे तो मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम, ये तीनों वृक्ष में ही लगते हैं। किसी आदमी में तो ये पत्ता तो लगेगा नहीं, है ना? किसी देवता में या आदमी में ये तीन चीज तो लगते नहीं है। कृष्ण को एक फूल अर्पण किया जाता है, फल अर्पण किया जाता है और पत्ता अर्पण किया जाता है। केला के पत्ते पर सब लोग खाते हैं। ये सब वृक्षों से आ रहा है, ऐसा नहीं कि संसद में से आ रहा है, सांसदों के देह से पत्ता निकल रहा है कुछ। ये सब वृक्ष दे रहे हैं, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो वृक्षों की रक्षा करे, ये कर्तव्य है। यदि वृक्ष संसार में कम हो जाएंगे या नहीं रहेंगे तो पृथ्वी में सब कुछ रहते हुए भी उनको प्रकट नहीं किया जा सकता, कैसे प्रकट करेंगे। यदि वृक्ष रोपण करते हैं तो एक वृक्ष कई फल लाता है जमीन से, तो ऐसे खोद करके देखिए डायरेक्ट तो एक भी फल नहीं निकल सकता है। लेकिन वृक्ष का रोपण करते हैं, अगर मान लीजिए आम का वृक्ष रोपे तो कई टन आम लाता है, पूरे जिंदगी पर विचार किया जाए तो कई टन हो जाएगा। एक वृक्ष कितना उपकार कर रहा है। ड्राई फ्रूट लोग कहा करते, ड्राई फ्रूट सब वृक्ष निकालते हैं, मनुष्य केवल खाना जानते हैं, वृक्ष निकाल रहे हैं। अगर पृथ्वी वृक्ष शून्य हो जाएगी तो ये सब चीजें मिलेंगी नहीं खाने के लिए, तो वृक्षों का इतना महत्व। इसीलिए भगवान ने भागवत में दो बार वृक्षों की सराहना की है। और भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो चैतन्य महाप्रभु ने भी वैष्णवों का गुरु वृक्षों को ही कहा है। यदि गुरु बनाना है किसी को तो वृक्षों से बना है। तरो रिव सहिष्णु, तो कितने सहिष्णु होते हैं, जो ढेला मारता है उसको विफल देते हैं, कोई काटे कुछ बोलते नहीं है, अपने घाम रौद्र सह करके दूसरे को छाया देते हैं, फल देते हैं, देता ही रहता है। ये वृक्ष का स्वभाव और सारी कठिनाई को सहता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब यह कहते हैं कि कीर्तन कैसे करना चाहिए, किस मूड में, तो ये बात तो कहते हैं, त्रिनादपि सुनी से न तरो रिव सहिष्णुना अमानना नाम देना कीर्तन नहीं सदा है। किसी भी आदमी का उन्होंने उदाहरण नहीं दिया कि उसके समान बन करके और तब भजन करो कीर्तन करो, वृक्षों के समान बन करके भजन करो, गुण आया है। और अपने ब्रज लीला में तो दो बार सराहना करते हैं अपने भक्तों से, अपने सखाओं से कहते हैं कि हे सखाओं, यही है देह धारण करने की सफलता, कि वचन से शरीर से और बुद्धि से दूसरे का हित किया जाए। इतावत जन्म साफल्य देह ना विह देहेषु, देहधारियों में यही जन्म की सफलता है, दूसरे का उपकार किया जाए। तो भगवान को वृक्षों से बहुत प्रेम है, वो वृक्षों के साथ ही ज्यादा से ज्यादा समय रहते हैं, गोचारा करते हैं, खेलते हैं, फिर बांसुरी बजाते हैं, बंसी पट पर चढ़कर बांसुरी बजाते हैं, उसके तट में रहकर शीतल छाया में बांसुरी बजाते हैं, फल खाते हैं, फूल कहीं श्रृंगार करते हैं। वृंदावन में भगवान कृष्ण का जो श्रृंगार होता है फूलों से ही ज्यादा होता है, फूल से, पत्ता से और फल से श्रृंगार होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जहां जहां भगवान जा रहे थे श्री बलराम जी के साथ और सुखाओं के साथ, वहां वहां वृक्ष फल और पुष्प का भाग लेकर श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर रहे थे, झुक रहे थे। उनकी आंतरिक अभिलाषा ये थी कि कृष्ण अपने नख से, अपने उंगली से हमारे फल को स्वीकार कर तोड़े। कृष्ण प्रकट लीला में बहुत बड़े शरीर वाला नहीं है, अभी तो बच्चा ही है, तो वृक्ष झुक रहे हैं कि कृष्ण फूल तोड़ेंगे हमारा, ये वो फूल गिरा रहे हैं चरणों में छू करके। श्री भगवान वृक्षों के, अपने भक्तों के इस भाव को और सेवा को देख करके उनके सेवा का प्रतिज्ञापन कर रहे हैं, बता रहे हैं बलराम जी से। स्मयं निव आह अग्रजम आदि पुरुष। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, तो आदि पुरुष हैं तो बलराम जी के भी कारण है। लेकिन उन्होंने लीला में श्री बलराम जी को अपने अग्रज के रूप में स्वीकार किया है। अग्रज अग्रज का अर्थ है जो आगे जन्म लिया है, अनुज का अर्थ है जो पीछे जन्म लिया, छोटा भाई अग्रज बड़ा भाई। आदि पुरुष होकर के भी समस्त जगत के जन्मदाता ब्रह्मा शिव आदि के भी जन्मदाता, और यहाँ तक कि भगवान विष्णु आदि के भी जो कारण है आदि पुरुष श्री भगवान कृष्ण, वे श्री बलराम जी को कुछ कह रहे हैं। वृक्ष वास्तव में मुख्य रूप से श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कितना शालीन व्यक्ति है, ये बलराम जी से कहते हैं कि हे देव, आप देखिए वृक्ष आपकी सेवा कर रहे हैं। स्मरण हंसी आ रही है भगवान को, वो कैसे कह सकते हैं कि देखिए सब वृक्ष मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरा भजन कर रहे हैं। भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं, शिष्ट भाषा नहीं। तो श्री बलराम जी से हंसते हुए कह रहे हैं, हंस रहे हैं, एक तो स्वाभाविक कृष्ण के मुख पर हंसी है, स्वाभाविक भगवान श्री कृष्ण से हंसी स्वाभाविक निकलती रहती है, उनका चेहरा जब देखेंगे मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते ही रहते हैं, और मुस्कुराहट बनावटी मुस्कुराहट नहीं है मनुष्यों जैसा, स्वाभाविक निकलता ही रहता है मुस्कान। महाभारत युद्ध में यह लिखा गया है भगवान श्री कृष्ण के हंसने से कितने लोग छिड़ जाते थे, युद्ध हो रहा है फिर भी हंसता हुआ जा रहा है। युद्ध में भगवान के सामने एक अड़चन आ गई थी, उनका मित्र अर्जुन कह दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कैसे भीष्म पितामह को बाण मारूंगा, द्रोणाचार्य को कैसे मारूंगा, क्या आप सर्वपल्ली मुनि को बाण मार सकते हैं। चक्रवर्ती पहले टीका में कहते हैं, अरे आप भी कंस का वध किए हैं, मधु दैत्य का वध किए हैं, और वध किए, आप तो गुरु का कभी वध नहीं किए हैं ना, और हमको कहते हैं कि मारो इनको मारो, ये बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है, हम नहीं करेंगे। तो भगवान को बहुत विकल नहीं हुए, तो उन्होंने कहा अच्छा युद्ध नहीं करना है। तब तो कह दिया जाए महाराज युधिष्ठिर से कि अब बंद कर दे युद्ध, अनाउंस कर दे कि युद्ध नहीं होगा, ठीक है तुम्हारी ही बुद्धि के अनुसार हम भी चलेंगे, युधिष्ठिर महाराज भी चलेंगे, युद्ध नहीं होगा ना, ठीक है तुम जो कहते हो वही किया जाए। तब अनाउंस किया जाए, युद्ध बंद किया जाए, तब कहते हैं कल्पण दो सौ कहता स्वभाव इच्छा में धर्म समुद्ध चेता जच्छे यह सार निश्चितम रोहितम ने शिष्य से हम सार विमान तम हुकम। फिर कहते हैं नहीं, अतिशय दीनता के कारण मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं धर्म के विषय में बिल्कुल मूढ़ चेता हो गया, अपने कर्तव्य के विषय में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो काम नहीं कर रही तो इतना फिलोसफी क्यों झाड़ रहे हैं, अरे भाई मित्र हो तो मित्र जो कहे तो हम कैसे तुमको आज्ञा दें। तो कहते हैं शिष्यस्थ हूँ, मैं मित्र नहीं हूँ आपका, मैं शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सिखाइए मुझे क्या करना चाहिए। जो क्षय श्या निश्चितम रोहितम है, जिस बात से मेरा कल्याण हो आप बताइए। तो भगवान हंसने लगा, और अर्जुन ये कह करके कहते हैं आप हमको सिखाइए, आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, पर युद्ध नहीं करूँगा। इतना अड़े हुए थे, कहते हैं उन्होंने कहा कि नौ युद्ध से सिखाना हो दूसरी तरह से मेरा शोक दूर कीजिए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान हंसने लगे, हंसने लगे कि देखिए शुरू से मेरा मित्र है, मुझसे साथी का काम कराने वाला, अब मेरा शिष्य बन गया। देखिए हंसी आ रही थी, और अर्जुन ने जब कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भगवान को हंसी आ रही थी कि युद्ध तो ही करे, युद्ध तो करेगा, लेकिन आज कह रहा है नहीं करूंगा, ये भी कह रहा है नहीं करूंगा, और ऊपर से कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप किस शरण में आया ना, आप हमको सिखाए। भगवान को हंसी आ रही, पहले भी हंसी आ रही थी, भगवान चिंता में नहीं पड़े कि हाँ हाँ युद्ध नहीं कर रहा है, बड़ी बेइज्जती होगी क्या होगा, उन्हें ऊपर ही छोड़ दिया। गीता में आप पढ़िए देखिए साफ कहते हैं भगवान, मुझे जो कहना था मैंने पूरा पूरा कह दिया, इसको विचार करके जथे छसे तथा करो, तुम खूब सोच लो, हमारा कोई इम्पोजिशन नहीं है, मैं दबाव नहीं डाल रहा हूँ, मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा हूँ, तुम पूरे फ्री मन से विचार करके जो इच्छा हो करो। लेकिन ये भी कह देता हूं, यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे नश्रो शशि बिना नशे, तुम नष्ट हो जाओगे। मेरी बात अगर नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। अभी हालत बिगड़ रही है, तुम मुख सूख गया है और पसीना आ रहा है, तुम्हें बैठा नहीं जा रहा। अर्जुन को खड़ा खड़ा नहीं रहा गया, जाकर के धम से पीछे बैठ गए थे। इस दिन इतना शरीर में बल नहीं रह गया था। युद्ध नहीं करना है अर्थात कृष्ण की बात नहीं मानना है, इतना विचार आते हैं उनको, गर्मी आने लगी, पसीना छूटने लगा, मुंह सूखने लगा। वो कृष्ण से कहता मुखम चौपरी, मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा ये बोला कि क्यों सूख रहा है जानते हैं? इसलिए नहीं कि बंधनों का बध हो जाएगा, ये तो सोच ही रहे थे, लेकिन बीच में जो उनको ये दुख बोला था कृष्ण की बात में नहीं मानना, वो तो नित्य परिकर है भगवान के, तो ये विचार आते ही उनकी हालत बिगड़ रहे थे। पर भगवान बिल्कुल प्रसन्न थे, हमेशा हंसते रहते थे। कई योद्धा ऐसे हुए जिन्होंने हंसी देख करके वो चीरे, बाप रे बाप, इसको कोई गम नहीं। और यही मुख्य कारण है अर्जुन के विजयी बनाने का, इसी कारण अर्जुन जीत रहा है। और कितने लोग तो भी जो कितने योद्धा ऐसे थे महाभारत में जो युद्ध छोड़ करके और भगवान की हंसी देखते थे, मुख देखते थे, बाण नहीं चलाते थे। और उसी समय अर्जुन का बाण आता था, खच्चे गला काट देता था। इस तरह कृष्ण को देखते हुए पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस, पार्थ के अस्त्रों से पवित्र हो जाते थे, भगवान का ध्यान करते हुए मुख देखते हुए शरीर छूटता था। कोई ऐसा पूछ सकता है तब जब युद्ध नहीं करते थे तो अर्जुन क्यों मारते थे? वास्तव में वही समय होता था जब उनको मारना चाहिए था। इस तरह भगवान के धाम में डायरेक्ट जाते थे। कई ऐसे योद्धा थे जो युद्ध में शस्त्र नहीं चलाते थे। एक बार तो भीष्म पितामह भी भगवान से कहने लगे, आइए आइए ऋषिकेश, हे पुंडरीक काक्ष, आप आइए मेरा वध कीजिए, आपके हाथ से मरूंगा तो मेरी सदगति होगी। भीष्म पितामह भगवान से कहने लगे, जब भगवान चक्र लेकर के चले थे, तो मैं यहाँ वर्णन कर रहा था श्री सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में कि वृंदावन में सब जगह वृक्ष भरे पड़े थे, लताएं, उन वृक्षों के शाखा झुकते थे, कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते थे। तो वृक्षों की इस सेवा को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से कहने लगे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, सबके शुरुआत हैं, सबके आदि हैं, सब उनके बाद ही जन्म लिए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बलराम जी को अपना बड़ा भाई स्वीकार किया है। ये है लीला की सुंदरता, ये श्री भगवान का। तो बड़े भाई को ही सारा श्रेय दे रहे हैं। कहते हैं श्री भगवान राज, अहो अभी देव बराम राचितम पादांग जनते सुमना फलारहणम नमन्तु पादाय। नमन्तु पादाय शिखाभिरात्मनस तनोपहते तरुजन जत्रुकम। सबसे पहले श्री कृष्ण अपने बड़े भाई श्री बलराम जी को संबोधित करते हैं, देव वर, अहो अमी देव वर, अथवा देव बराबर अर्चित। भगवान कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ लोगों के द्वारा पूजित चरण कमल, हे देव आप सबसे श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा शिव आदि देवता भी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। जो भी प्रसंग हो रहा है इसका अर्थ श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा भगवान शिव भी करते हैं और ब्रह्मा जी इंद्र वरुण आदि देवता करते हैं। देव वरा देवताओं में श्रेष्ठ हैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ, पर ये भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण बलराम जी को कह रहे हैं कि हे देव श्रेष्ठ, आपके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी करते हैं, ऐसे आपके पादाम्बुजन आपके चरण कमल में अमी ये दिखा करके भगवान श्री कृष्ण प्रणाम, जब श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं वृक्ष तो कहते हैं अहो अमी देव बरा वरार्चितम पादाम्बुजन ते सुमना पलायन, हे देव, हे बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित चरण कमल, ये जो वृक्ष हैं देखिए भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट ऐसे हाथ से छू करके बता रहे हैं श्री बलराम जी को, ये आपके चरण कमल में फल और पुष्प का पूजक करण लेकर के नमस्कार कर रहे हैं, आपके चरण कमल में नमस्कार कर रहे हैं, मतलब मेरे चरण कमल में नमस्कार कर रहे हैं। भाव यही है, शब्द ऐसे हैं, ऐसे ही कहा जाता है वास्तव में। अच्छे व्यक्ति को कभी भी दूसरों के द्वारा सम्मान ग्रहण नहीं करना चाहिए, या किसी वस्तु का अधिकारी बताना हो तो ऐसे नहीं बताना चाहिए कि ये मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। वह सिस्टम है, यदि आपका घर है तो आप कहते हैं, शिष्ट भाषा में कहा जाएगा ये आपका घर है, आपका खेत है, आपका बच्चा है, ये है, कहते हैं ये सिस्टम है। आजकल के लोग तो सीधे कहते हैं मेरी मिसेज है, ऐसे नहीं बोला जाता है। बोलना है तो अपने पुत्र का या पुत्री का नाम रख करके ऐसे कहते हैं, उसकी मम्मी उसकी माँ, ऐसे विशिष्ट भाषा है। हमेशा भारतीय संस्कृति में एक दूसरे के संबंध को पोषने की चेष्टा की गई है, पोषने की चेष्टा की जाती है, ऐसे वर्णन किया जाता है। जैसे मान लीजिए अपना बच्चा है पुत्र है तो उससे पिता क्या कहेगा, मान लीजिए माँ को कुछ कहना है अपनी पत्नी को कुछ कहना है तो वो कहेगा अपने मम्मी से ये बात कह दो, अपनी मम्मी से कह दो भोजन बनाना। तो मम्मी के साथ उस बच्चे का स्नेह दृढ़ हो, संबंध दृढ़ हो, इस भाषा के द्वारा एक कोशिश की जाती है। ये कभी नहीं पिता कह सकता है, कभी नहीं कह सकता है भारतीय संस्कृति में मेरे पत्नी को कह दो भोजन बना है, बच्चे को ऐसे नहीं कहा जाए। अगर ऐसा कहा जाए कि मेरे पत्नी को कह दो भोजन बनाने के लिए, तो इसका मतलब है तुम केवल अपना संबंध रखना चाहते हो रिजर्व, और बच्चे में और माँ में स्नेह वृद्धि नहीं चाह रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति है, इस तरह से बोला जाता है। यह पत्नी बोलेगी तो बच्चे को कहेगी अपने पिता को अपने पापा को कह दो भोजन करने के लिए, ऐसे बोलेगी। वो तो नहीं कहेगी हमारे मिस्टर को कह दो आप भोजन करो, ये अंग्रेजों की स्टाइल है वास्तव में, माई वाइफ माई मिसे माई 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 मिसे, कभी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है भारतीय संस्कृति में। इसका एक उदाहरण है रामचरितमानस में कि सीता जी जब वन में जा रही थी भगवान के साथ, तो कभी कभी वो गांव के बाहर किसी बगीचे में रुकते थे, गांव में प्रवेश नहीं करते थे भगवान, गांव से बाहर जाते थे, क्योंकि पिताजी ने कहा था 14 वर्ष राम वनवास, कैकेयी ने कहा था 14 वर्ष वन में रहना है, तो एक दिन भी गांव में नहीं रहते थे। अगर रास्ते में गांव पड़ गया तो गांव को छोड़ करके उसके बाएं बाएं चले जाते थे, उसको दाहिने छोड़कर। तो बगीचे में एक दिन ठहरे थे वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, लगता था गर्मी का दिन रहा होगा, जो भी हो, तो लोग पानी लाए पीने के लिए गांव के लोग। गांव से बाहर दो लड़के बहुत सुंदर बैठे हैं, उनके साथ एक स्त्री आई हुई है, तो स्त्रियां स्त्री के साथ बैठी और पुरुष है राम और लक्ष्मण के साथ बैठे, पूछने लगे कहाँ घर है, कैसे आए, क्यों आए। तो स्त्रियां पूछती हैं सीता जी से कि देवी तुम्हारा स्वरूप ऐसा है कि तुम तो देवता जैसी लगती हो, कम से कम इतना तो जरूर है कि तुम राजकुमारी हो, तो राजकुमारी हो करके तुम वन में क्यों जा रही, इधर कहाँ जा रही है। और स्त्रियों में एक बात की बहुत जिज्ञासा होती है, वो जानना चाहती है कि उनके साथ जो पुरुष है और क्या है, उसे मुख से कहवाना चाहती है, जानते हैं कि ये पति ही होगा, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव होता है तो कहवाना चाहते हैं। तो गांव की स्त्रियां कहती हैं, सब समाचार कहने के बाद पूछने के बाद तो कहते हैं कि राजकुमारी ये दोनों तुम्हारे कौन हैं, इनके साथ तुम्हारा क्या संबंध है, नाता है। सीता जी कहती हैं, देखिए कितना सुंदर सुशील भाषा कहती हैं, सहज सुभाय सुभग तम गोर नाम लखन लघु देवर मोर। ये जो सांवले हैं उनको तो क्लियर वर्णन की सीता जी, जो सांवले हैं जिनका बहुत सुंदर स्वभाव है और शरीर गोरा है, तो ये हमारे छोटे देवर हैं। तो देवर कहने का मतलब कि हमारे पति के भाई है, यह अर्थ है। वो भी छोटे देवर हैं, तो बड़े देवर अयोध्या में हैं, भरत जी बड़े थे लक्ष्मण जी से। तो सीता जी कहते हैं कि नाम लखन लघु देवर मोर, ये छोटे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर है। देखिए कितनी सुंदर भाषा है। और जब राम का वर्णन करना हुआ तो बहुल बदन विध्वंसल ढाकी पियतन चितई भौं करि बाकी। जब अपने पति का वर्णन करना हुआ तो सीता जी घूंघट को थोड़ा और बढ़ा ली और राम की तरफ केवल देख दे तो ये समझ गए कि अच्छा है पति है। कहना नहीं पड़ा ये हमारे मिस्टर हैं और ये हैं। आजकल बहुत थर्ड क्लास की भाषा लग जाते हैं, बोलना भी नहीं जानते कैसे बोलना चाहिए। भारत के लोग ऐसे हमारे मिसेज हमारे ये मिस्टर लगता है कि दूसरे के साथ संबंध बताएंगे तो कोई लेकर उनको भाग जाएगा, ऐसा लगता है। इसलिए अपना रिजर्व, मेरी वाइफ मेरा हस्बैंड, अरे क्या कहने की जरूरत, दुनिया जानती है कि तुम वाइफ हो और हस्बैंड है ना, इतनी छिपे हुई बात नहीं। यह भगवान जब बोल रहे हैं वृंदावन में, यद्यपि मैं नीति की बात यहाँ कह रहा हूँ, नीति की बात यहाँ पर नहीं कहना चाहिए, तो भगवान के लीला राज्य की बात है, लीला विलास। फिर भी भगवान जो व्यवहार कर रहे हैं बलराम जी के साथ, उस पर थोड़ी सी बात याद आ गई, मैं कह दिया। तो श्री भगवान श्री बलराम जी को कहते हैं कि हे देव, ये वृक्ष आपको प्रणाम कर रहे हैं, देखिए आपके पादांबुज में चरण कमल में ये फूल और फल का उपहार दे रहे हैं, सुगनम फला है और हम पूजो करण, देखिए आपको फूल दे रहे हैं, आपके चरणों में फूल अर्पित कर रहे हैं, फल दे रहे हैं, हे देव आप कृपा करके इनको खाइए, इनके फल को खाइए, इनके फूल को लेकर के अपने पगड़ी में खोसिए, अपने अलग में बांधिए। कहने का मतलब ये है, और भगवान स्वयं तोड़ रहे हैं फल को, तोड़ करके कहते हैं हे देव आप लीजिए खाइए, बेचारे आपको प्रणाम कर रहे हैं, और कुछ बलराम जी को देते हैं और कुछ स्वयं डायरेक्ट खाने लगते हैं। इस तरह भगवान किसी के सेवा का उपकार मानते हैं, वृक्षों को सुना करके हम उनके सेवा का प्रतिज्ञापन कर रहे हैं और फूल तोड़ते हैं, फूल कुछ बलराम जी को खोजते हैं, फिर स्वयं अपने सिर में खोजते हैं और बच्चों को देते हैं। इस तरह कहते हुए जाते हैं सुमना फला नमन तो पादा है सिखा भी रखना, अपने सिखा भी अपने शिखाओं से अपनी शाखाओं से ये फल और पुष्प के भेंट लेकर के आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, नमन तमप हते तमजम जाते तम। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जिस कारण से वृक्ष का शरीर मिला है, जिस तमह के कारण तम की हत्या करना चाहते हैं, अर्थात आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, आपको प्रणाम करने से जीव की शुद्धि होती है, तो ये वृक्ष बेचारे प्रणाम कर रहे हैं। वृक्षों के सामने एक समस्या थी, वे बेचारे हरण और गाय या बच्चों जैसे घूम घूम कर कृष्ण का संग नहीं कर सकते थे। इसको श्रील सुखदेव गोस्वामी तरुजन जत कृत, जिस तमोगुण के कारण उनको जन्म मिला है उस तमोगुण की हत्या चाहते हैं, तो उसका इतना ही मतलब है। तमोगुण वास्तव में नहीं है, लेकिन वृक्षों के हृदय में एक तकलीफ है, दुख है कि वे हमेशा सोचते हैं कि कृष्ण के साथ हम घूम घूम करके चल, जैसे बच्चे चलते हैं, गौएं चलती हैं, हरणियां चलती हैं, तैसे हम भी चल रहे कृष्ण के साथ, लेकिन बेचारे वृक्ष जन्म में है। तो तमोप हत्या का ये अर्थ है कि मन में जो ग्लानि है, दुख है आपके साथ नहीं घूमने का, उसका विनाश चाहते हैं, अर्थात हे देव आप इनको भी ऐसा अवसर दीजिए कि ये आपके साथ घूम सके, भ्रमण कर सके। वृक्षों को बहुत दुख इस बात का होता है, यदि वो चिन्मय है वो घूम सकते हैं, लेकिन प्रकट लीला में भगवान इस बात को छिपा रहे हैं, भाई वृक्ष है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, इस मनोग्लानि के साथ मर रहे हैं, इनको बड़ा दुख है, तो अपन पर कृपा कीजिए, अर्थात इनको भी या तो गोप सखा बना लीजिए या भंवरा बना लीजिए, पक्षी बना लीजिए, इनका एक भेषण होना चाहिए, मतलब इनकी उन्नति होना चाहिए। इसके द्वारा श्री कृष्ण यह कह रहे हैं, बलराम जी का नाम ले रहे हैं लेकिन वो वृक्षों को सुना कर कह रहे हैं, एक प्रकार से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे मन की गुलामी दूर होगी, तुम मेरे साथ घूमोगे, चाहे भंवरा बनकर या सखा बनकर या गाय बनकर के पक्षी बनकर के हरिण बनकर के, तुम लोग मेरे साथ घूमो, चिंता मत करो। एक प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, इन बलराम से कहते हैं कि इन पर कृपा कीजिए, इनकी गुलामी दूर कीजिए। नमन तो पाता है शिखा विराट पर तमो पहाते तमजन जत कृपा, लेकिन इन्होंने स्वयं ही वृक्ष का जन्म लिया है, ये भगवान कह रहे हैं तरुजम जत कृतम, इन्होंने स्वयं ही जन्म लिया है वृक्ष के रूप में, छाया करने के लिए आपके ऊपर, अपने फूल देने के लिए, अपने फल देने के लिए इन्होंने वृक्ष का जन्म ग्रहण किया है, लेकिन अब वृक्ष का शरीर मिलने पर इनको एक बात का बहुत दुख है कि ये चल चल करके आपके साथ संग नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। तो ऐसा होता कि ये वृक्ष भी रहते और साथ ही जब चाहे तब पक्षी भी हो जाए, मयूर भी हो जाए, ये गाय हो जाए, मनुष्य हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। तो कृपा कीजिए इसका मतलब है कि मैं कृपा कर दिया, वृक्षों को सुना कर कह रहे हैं तुम्हें ये सब सौभाग्य मिल गया। आगे भगवान कहते हैं देखिए किसी पुष्प विशेष पर, किसी वृक्ष पर, लता पर भंवरे भनभन 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 गा रहे हैं। भंवरों का स्वर बहुत मधुर होता है, कई मिल करके गाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है भंवरा। भगवान की लीला में तो भंवरा का बहुत बड़ा महत्व है, वृंदावन सब जगह भंवरों का वर्णन है, और श्री राधा रानी के साथ जो आलाप है उद्धव जी के साथ राधा रानी का, उसको भ्रमर गीत ही कहते हैं, भंवरे से बात कर रहे राधा रानी। एक भंवरा राधा रानी के चरण के सुगंध से लुप्त होकर के राधा रानी के चरण को छूता रहता था, छूने की कोशिश करता था, तो उसमें राधा रानी को ये भाव आ गया कि यही मथुरा से दूत आया हुआ है, मैंने सुना था कि मथुरा से एक दूत आया है कृष्ण का। ये सुनने पर अरुण जो भंवरा उद्धव जी जब आए थे उसी समय आकर के चरण पर लुप्त होकर के छूना चाहता था, प्रिया जी के चरणों में अद्भुत सुगंध है, उस सुगंध के तो लोलुप भगवान श्री कृष्ण भी रहते हैं। कुछ महानुभावों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ही अपने प्रिया श्री राधा के उद्गार को सुनने के लिए भंवरा बनकर चरण पर लौट जाए, राधा जी ने उस भाव से बहुत बहुत बात कही, तो धन्यवाद कर। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्याम सुंदर भावों का वर्णन कर रहे हैं। एते लिनस्तव जसो खिल लोक तीर्थं गायन्त्यादि पुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमि मुनिगणा भवतीय मुख्या गूढ़ं बने गूढ़ं बने पिन जहात्यन घात्म दैवं। हे देव, हे प्रभु, ये अलीना, ये जो भावरे हैं क्या कर रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से, आप सुनिए। समस्त जगत के जीवों के पाप का हरण करने वाले आपके जस को ये गा रहा है। अखिल लोक तीर्थम तब जसह गायंती, आपके जस को गा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए क्या जस गा रहा है। तो भगवान ने भावों को सुना कर कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरे जस को, तुम लोग मेरे जस को गा रहे हैं, गा रहे। भगवान श्री कृष्ण के जस को, कीर्ति को अखिल लोक तीर्थम कहा गया। तीर्थ का अर्थ तारने वाला। इस विश्व में मनुष्य को या किसी जीव को पवित्र करने के लिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान साधन है भगवान का जस गाना और सुनना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अखिल का अर्थ होता है समस्त, और लोक का अर्थ है जीव, कम से कम मनुष्य या देवता। समस्त जीवों के पाप को नष्ट करने वाला भगवान का जस है। अघ के रही हरि चरित्र बखाने, भगवान का जस गाने पर, कीर्तन करने पर पाप रह ही नहीं सकता है। चाहे कितना भी जगह में पाप हो, भगवान के नाम में, भगवान के गुण में इतनी शक्ति है, इसलिए उसको तीर्थ कहा गया। अखिल लोक तीर्थ, समस्त जीवों को तारने वाला, पवित्र करने वाला, उनके पाप राशि को नष्ट करने वाला भगवान का जस। ऐसे आपके जस को एते अलीन, ये भौरे गा रहे हैं, अपने श्रीमद अंगुली से भगवान दिखा रहे हैं बलराम जी को, ऐसे दिखा रहे, देखिए भौरे गा रहे। जब बगल में गा रहे होंगे, दोनों तरफ तो सामने ही गा रहे होंगे, कभी कभी वृक्षों के बीच में लपट करके कृष्ण चलते हैं, कृष्ण के छाते का स्पर्श, उनके गाल का स्पर्श, उनके अलग का, पैर का, वृक्षों को होता रहता था। कभी कभी हाथ से उनके शाखा को हटाते थे, लताओं को हटाते हुए चलते थे। यहाँ पर एते, पहले अमी का है, अमी वृक्ष, ये जो वृक्ष है, और अब एते अली में, ये भाव है, सब जगह ये कह रहे हैं, ये इसका मतलब श्री बलराम जी को दिखा रहे हैं, अंगुली से संकेत कर रहे हैं। और ये का अर्थ है अभी निकट में जो है, ये भाव है आपका जस गा रहे हैं। समस्त जीवों के पाप को दूर करने वाला, सबको परम पवित्र करने वाला आपका जस गा रहे हैं। एते लिनस्तव जसो खेलोक तीर्थम गायन्त, ये गा रहे हैं। और आदि पुरुषान पदम भजन्ते, और हे आदि पुरुष, ये प्रत्येक पद में, प्रत्येक स्थान में ये आपके साथ चल रहे हैं। देखिए, आप इस पर ध्यान दीजिए, यही भंवरे जब ही वन में प्रवेश किए, वो शुरू से ही साथ में चल रहे हैं। भंवरे भगवान को छोड़ते नहीं है, वनमाला की सुगंध है, उनके हस्त कमल की सुगंध, मुख कमल की सुगंध, अधर कमल की सुगंध, पद कमल की सुगंध, सारे शरीर से तो दिव्य सुगंध निकलती है, चतुर्सर की सुगंध। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर, भगवान श्री कृष्ण का शरीर ही चंदन है, कर्पूर है, कस्तूरी है और अगुरु है। उन चारों के समभाव को यदि पीसा जाए, रियल में सब वस्तुएं हों, तो उसे जो सुगंध निकलेगी उत्कृष्ट कोटि की, तो उससे कोटि कोटि गुना दिव्य सुगंध भगवान के शरीर से निकलती है। और मुख्य सुगंध क्या होता है, कमल का, कमल सुगंध राज रहता है। तो कृष्ण के श्री विग्रह से चाहे वो अंगुली हो, पैर हो, कान हो, गाल हो, वक्षस्थल हो, सब निकलते रहते हैं। इसलिए भावने भन 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 करते हुए चलते हैं। ऊपर से वनमाला, पंच वर्ण के पुष्पों से गुथी गई वनमाला की दिव्य सुगंध से भावने आया करके बैठते रहते हैं, आया करके बैठते रहते हैं वनमाला और शरीर पर भी बैठ जाते हैं। ये इतना ध्यान रखने के कभी भी वे दंश नहीं करते हैं, डंग नहीं मारते हैं भावने। तो भगवान के दिव्य श्री विग्रह के सुगंध से लुप्त रहते हैं और चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं गुढ़म बने पिना जहत आत्मदय। इसलिए हे आदि पुरुष, हे प्रभु, यद्यपि आप मनुष्य लीला कर रहे हैं अपने गोलोक वृंदावन से, आप इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, आप गुढ़ बने हुए हैं, अपना ऐश्वर्य छिपा लिए हैं मनुष्य के रूप में, उसमें भी गोप के रूप में, पशुपालक के रूप में आप छिपे हुए हैं, पर ये आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, न जहती आपका त्याग नहीं कर रहा है। इसके द्वारा भगवान ये कह रहे हैं कि ये गोलोक में भी थे, वैकुंठ में भी थे और आप यहाँ छिपे हैं, तो वहां से यहाँ आ गए हैं, ये छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए मैं तो आपसे ये बता रहा हूँ कि प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुखिया, आप जानते हैं ये कौन है, आपके भक्तों में, आपके दासों में ये मुख्य दास हैं, श्री नारद जी आदि हैं। ये कहने का मतलब भवदीय मुखिया, आपके जितने भी सेवक हैं, पार्षद हैं, उनमें ये मुख्य है, श्रेष्ठ है। और आपके धाम में भी, आपके अप्रकट वैकुंठ में या ब्रज में, गोलोक में ये साथ में थे और अभी भी आप वन में छिपे हैं, वन है, वन में एक चरवाहा बन करके घूम रहे हैं, आप फिर भी आपको पहचानते हैं, आपको नहीं छोड़े हैं, आपके साथ चल रहे हैं। प्राय अमी मुनिगणा, प्राय है ये सब मुनिगण है। प्राय शब्द से कोई कोई दो चार ऐसे हैं सौ में जो मुनि नहीं है, उसका मतलब यह है कि भगवत पार्षद है और सब है, और सब प्राय मुनि है, मुनिगण मुख्य भगवान के भक्तों में जो मुनिजन है उनमें सबसे श्रेष्ठ मुनि है नारद मुनि, और भी अनेक मुनि है। मुनि का अर्थ ही होता है जो मौन रहे, कृष्ण का केवल कीर्तन करे। देखिए आपका गुण गाते हुए, आपका जस गाते हुए हर एक जगह पर आपके साथ पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि आप जब गोपियों के साथ रहते हैं उस समय भी आपके साथ रहते हैं। भगवान ये अपने लिए कह रहे हैं, देखिए एक प्रकार से ये कह रहे हैं भवनों से कि तुम लोग कितने धन्य हो, मैं यहाँ पर एक गोचारक के रूप में विहार कर रहा हूँ, वन में वनवासी के रूप में, लेकिन हमारा साथ तुम लोग नहीं छोड़े हो, धन्य हो तुम हमारे परम प्रिय भक्त हो। और विशिष्ट भाषा में श्री बलराम जी पर डाल रहे हैं सारी स्तुति, लेकिन प्रकारांतर से भगवान अपने विषय में ही बोल रहे हैं। इसी तरह से बोलना था, मैं उस समय याद किया जैसे लोग लोक में कहते हैं ये खेत आपका है, ये कार आपकी है, ये जो कुछ भी अपने पास है सबको कहते हैं कि आपका है, आपका है। केवल एक ही व्यक्ति को नहीं कहते हैं, पत्नी को नहीं कहेंगे कि आपकी पत्नी है, बाकी सब कुछ कहेंगे आपका है ना, और सब कुछ कहा जा सकता है, ये आपका है, आपका है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस सुशील भाषा का प्रयोग कर शिष्टाचार, बड़े भाई से कैसे बात करना चाहिए, हे देव आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपका जस गा रहे हैं, आपके भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है, आपका इस वन में भी जबकि आप गुढ़ हैं, छिपे हुए हैं गोचारक के रूप में, फिर भी आपका संग नहीं छोड़ रहे हैं, आप इन पर कृपा दृष्टि कीजिए, आपके भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके साथ घूम रहे हैं। यह प्रतिदिन की बात है, ऐसा नहीं कि जिस दिन प्रवेश किए केवल उसी दिन, वृक्ष प्रतिदिन प्रणाम करते थे, प्रतिदिन फल पुष्प समर्पित करते थे, और भगवान श्री कृष्ण प्राय प्रतिदिन ये सब भिन्न भिन्न शब्दों में गाया करते थे, ये है ये है ये है गान है। और भ्रमरों में भी कोई कोई मुख्य भ्रमर होता था, उसके पीछे सब चलते थे। भवदीय मुख्य, आपके भक्तों में वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ के लोग हैं। तो इसके द्वारा भगवान ने यह भी संकेत किया कि आपके भक्तों में श्रेष्ठ भक्त कौन है जो हमेशा आपका जस गा रहे। इसके द्वारा वो सिद्ध कर रहे हैं, यानी कि ये आपका यश गा रहे हैं और आपके भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है, पार्षदों में श्रेष्ठ है। इसके द्वारा ये टीका में बात लिखी गई है, संकेत कर रहे हैं भगवान की, जो कृष्ण का कीर्तन गाता है, जो कृष्ण का गुणानुवाद करता है, कथा कहता है, वही भक्त है वास्तव में श्रेष्ठ। इस तरह से एक डिफिनेशन दे रहे हैं भगवान। तो कृष्ण का जस गाना चाहिए, वही शुद्ध करेगा, वही वैकुंठ देगा, भगवान का प्रेम देगा। कीर्तनी में सजा हारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान वृंदावन के वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं और भंवरों की। अब आगे कहते हैं, नृत्यन्तमी शिखिन इड्य मुदा हरिण्यः कुर्वन्ति गोप्यैवते प्रियमेक्षणेन सुप्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या वनौकशय्यान्निसर्गः। सब जगह ये सब जगह नृत्यन्तमी शिखिन इड्य हे परम प्रशंसनीय, श्री बलराम जी को भगवान कह रहे हैं, अपने लिए कह रहा हे ईड्य, ईड्य का अर्थ स्तुत्य, हे प्रशंसनीय, वास्तव में आप ही सराहने योग्य हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि इस जगत में आप ही सबसे सराहनीय सराहने लायक हैं, आप ही प्रशंसनीय हैं, आपकी लीलाएं आपका चरित्र दिव्य है। किसी भी विषय में वास्तव में आप ही ईड्य है, प्रशंसनीय है। देखिए ये सिखिना ये मयूर नाच रहे हैं, नृत्य अमी सिखिना, सिखी का अर्थ होता है जिसके सिर पर सिखा हो, मयूर के सिर पर सिखा होता है नीला रंग, तो उसको सिखी कहते हैं। सिखिना बहुवचन है, अमी सिखिना नृत्यमति, ये मयूर नाच रहे हैं। देखिए कभी कभी मयूर कृष्ण और बलराम को घेर करके नाचने लगते हैं, कृष्ण के सामने आते हैं और कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी के शब्द को सुन करके और उनके सामने बादल जैसे श्री विग्रह को देख करके मयूर नाचने लगते हैं। जब नाचने लगते हैं तो कृष्ण खड़े हो जाते हैं, केवल बांसुरी बजाते हैं और चारों तरफ से कृष्ण के चारों तरफ वो नाचने लगते हैं, फैला करके, कृष्ण का कभी दिखाई भी नहीं पड़ते। जब मयूर नाचते हैं पंख को फैला करके और कृष्ण उसके अंदर हो जाते हैं, तो और जो पक्षी होते हैं वृक्ष की शाखा पर चढ़ करके देखते हैं कृष्ण को। ये वेणु गीत में वर्णन है श्रीमद् भागवत में, और जहाँ बैठे रहते हैं देखते हैं कृष्ण दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो पक्षी चले जाते हैं और वृक्ष की ऊंची शाखा पर देखते हैं, और गौएं भी और हरिण भी गिरिराज जी के ऊंचे शिखर पर जाकर कृष्ण को देखते हैं। मयूरों के पंख के फैलाव के कारण कृष्ण को कभी दिखाई नहीं पड़ते, वो नाचते हैं थिर थिर करके, वे भी नाचते हैं। तो मयूरों के नाच का वर्णन श्री भगवान कर रहे हैं कि अमी सिखिना नृत्यम होती, ये मयूर नाच रहे हैं। देखिए वास्तव में श्री बलराम जी को दिखा रहे हैं, बलराम जी ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे, लेकिन मयूरों के मन में ये विश्वास है कि श्री कृष्ण हमारे नृत्य को पसंद कर रहे हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं बलराम जी का बहाना करके, देखिए मयूर नृत्य कर रहे हैं और इसके द्वारा ही आपका प्रिय कर रहे हैं। आगे के सब पदों से इसका संबंध है, नृत्यंत में सीखने इड मुदा हरिण्य। अब देखिए मुदा भी सब जगह लगाएगा, मुदा का अर्थ होता है आनंद से, प्रेम से, आनंद से ये मयूर नाच रहे हैं और आनंद से हरिण्य कुर्वन्ति प्रियमते गोप्यैवते प्रियमेक्षणेन, और ये हरिणिया आपकी तरफ कितना प्रेम से देख रही हैं, इनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। और इनके विषय में श्री भगवान देखिए बड़े भाई से बात कर रहे हैं, लेकिन गोपियों का प्रेम भगवान के हृदय पर इतना छाया हुआ है, वे बोल दिए कि जैसे गोपियां आपका दर्शन करती हैं, अपनी इच्छा से चितवन से आपका प्रिय करती हैं, उस तरह से हरिणिया आपके तरफ देख करके आपका प्रिय कर रहे हैं, मेरा प्रिय कर रहे हैं, भगवान के कहने का आशय। तो मयूर नृत्य के द्वारा आपका प्रिय कर रहे हैं और हरिणिया प्रेम निरीक्षण से आपका प्रिय कर रहे हैं, आपको बहुत पसंद पड़ता है। आपको इन हरिणियों की आंखों को देख करके गोपियों की आंखों का स्मरण होता है। हरिश्री जी इस प्रसंग पर कहे हैं, देखिए जिस विचार में किसी व्यक्ति का मन हमेशा फंसा रहता है, आसक्त रहता है, तो वह किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसका स्वभाव जाता नहीं है। बड़े भाई से बात कर रहे हैं भगवान, गोपियों का प्रेम छाया है भगवान के हृदय पर, क्योंकि गोपियां प्रेम शिरोमणि है और संसार में सबसे अधिक कृष्ण को किसी ने सुख दिया है, उनसे प्रेम किया है तो गोपियां, तो उनका प्रेम, उनका निस्वार्थ प्रेम, सुसुख गंध शून्य प्रेम गोपियों के चित्त पर छाया हुआ है। तो बलराम से यहां तो कहते हैं कि देखिए जैसे गोपियां आपकी तरफ देखती हैं, ऐसे हरिणियां आपकी तरफ देख रहे हैं। हरिश्री जी कहते हैं भगवान को ये भी नहीं होश था कि मैं बड़े भाई से बात कर रहा हूं, होश रहता नहीं वास्तव में, चाहे भगवान हो चाहे जीव हो कोई हो, प्रेम के वश में तो भगवान है। जैसे गोपियां आपकी तरफ बड़े बड़े नेत्रों से देखती है, ऐसे हरिणियां देख रही हैं और आपका निरीक्षण के द्वारा प्रिय कर रही है। सुक्तश्च कोकिल गणा गृहमागता धन्या बनव कसान सता में सर्व। और कोयल गण सुक्तश्च कोकिल गणा, कोकिल कोयल को कहते हैं, तो ये कोयल का समूह चारों तरफ इधर उधर बैठ करके कुहू कुहू बोल करके आपका प्रिय कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? गृहम आगता है, आप इनके घर में आए हैं। वास्तव में वृक्षों का या भंवरों का या पक्षियों का मयूर आदि का घर है वन, वन ही उनका घर है, तो आप इनके घर में आए हैं इसीलिए लोग आनंद से आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रथम बार प्रवेश किए हैं आप, इसके पहले नहीं आए थे इस वन में, तो गृहम आगता है, घर में आए हुए आपका ये स्वागत कर रहे हैं। जिसके पास जो विशेषता है वो कर रहा है, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के आने पर या प्रिय के आने पर अपनी खुशी को व्यक्त किया जाता है। पहला खुशी का व्यक्तिकरण है नाचना, आनंद में नाच रहे हैं और प्रेम से देख रही है हरिणियां। किसी की तरफ देखना उसका स्वागत करना है, तो दृष्टि द्वारा, नृत्य द्वारा और मधुर वचन द्वारा, कोयल के पास बहुत मधुर शब्द, इन सब के द्वारा ये आपका स्वागत कर रहे हैं। धन्य बनाओ कसर, वन में रहने वाले ये जीव धन्य है, धन्य है। वास्तव में इनका जन्म सफल है, वनवासियों की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, और कभी मनुष्य की ऐसी प्रशंसा भगवान ने नहीं किया होगा जितना वो वनवासी मयूर और कोकिल तथा हरिणियों की प्रशंसा कर रहा है। उपलक्षण से अन्य जीवों की भी समझ लेना चाहिए। धन्य बनव कसर, वन ओकस का अर्थ घर निवास, वन का अर्थ वन, बनव कसर वन ही जिनका निवास है। ये सब वास्तव में हमेशा वन नहीं रहते हैं, वृक्ष पर ही रहते हैं। धन्य बनव कसर, भगवान ने कभी नहीं कहा कि धन्य नगर कसर, सिटी में रहने वाला धन्य है, कभी नहीं कहा भगवान। सिटी में रहने वाला तो और धुआं दिखा करके मरते रहते हैं, कभी खुश नहीं देखे जाते, खुश देखे भी जाए तो पागल की तरह रहते हैं। पागल और खुश भी देखा जाए तो अच्छा नहीं होता है, पागल हंसता भी है तो फिर भी खराब ही रहते हैं। यहां भी सतान में सर्व भगवान श्री बलराम से कहते हैं कि यही सज्जनों का स्वभाव होता है, निसर्ग अपने आप यही स्वभाव होता है कि अपने घर पर आए हुए अतिथि का भाई इस तरह स्वागत करते हैं। तो आप इनके अतिथि बने हैं, भगवान ये नहीं कहते हैं कि हम और आप दोनों आए हैं, गृहम आगताय एक वचन का प्रयोग करें, आप इनके घर आए हैं इसलिए नाच नाच करके आपका स्वागत कर रहे हैं, गा रहे हैं और प्रेम से निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। इस तरह भगवान कृतज्ञ शिरोमणि है, उन वनवासी जीवों के भी प्रेम को भगवान व्यक्त करके सुना रहे हैं कि मैं सब समझ रहा हूँ। और धन्य कहना है कि धन्य बनाओ का सब, ये वृंदावन में निवास करने वाले मयूर हरिणिया और कोयल धन्य है, धन्य बनाओ का सब। यदि वन में निवास करना कोई बहुत सफल जीवन नहीं माना जाता है, गरीब आदमी वन में रहते हैं, चाहे पशु पक्षी जिनको ऐसा असहाय शरीर मिला हुआ वन में रहते हैं, लेकिन भगवान इन्हीं की प्रशंसा करें, धन्य बनल सतार, यही है सज्जनों का संतों का स्वभाव, वे अपने घर में आए हुए अतिथि का ऐसा ही स्वागत करते हैं, ये आपका स्वागत कर रहे हैं, इनके पास जो भी है वो कर रहे हैं। मयूरों के पास क्या विशेषता है, वो बेचारे गा नहीं सकते बहुत अच्छा से, पर एक विशेषता है वो नाच सकते हैं, नाचते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में चार संप्रदाय बनाए नाचने के लिए, गाने के लिए, तो कई कई प्रधान बनाए। किसी दिन कथा हुई तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि रथ यात्रा में भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे नाचते हैं, तो नाचने के लिए उन्होंने एक दल में हरिदास ठाकुर को नियुक्त किया, एक में अद्वैताचार्य को और एक में बक्रेश्वर पंडित को, ध्यान नहीं आ रहा है चार, और इसके साथ साथ कुलिया ग्राम के लोग और सुलहट के कहां कहां के तीन और संप्रदाय आए थे, तो सात संप्रदाय बनाए नाचने के लिए। और उसमें भी भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने से कहे कि ये नाचेंगे, ये प्रधान गायक है, तो किसी किसी में गायक होता है, जैसे श्रीवास पंडित गाए, श्रीवास पंडित से नाचने के लिए, स्वरूप दामोदर ये गाय गाने के लिए एक एक दल में प्रधान बनाया गया, और भी कई लोग इस तरह गाने वाला होते थे, नाचने वाला, तो नाचने वाला केवल नाचता ही था, मैं यह कहना चाहता था शुरू से अंत तक नाचना। हरिदास ठाकुर एक वृद्ध शरीर के महापुरुष थे, फिर भी शरीर तो स्पिरिचुअली काम कर रहा था, वो पूरा नाचते थे। उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन उनको ये सौभाग्य मिलता था भगवान के दर्शन का, बाद में तो केवल चक्र को देख करके प्रणाम करते थे, दंडवत किया करते थे। नाचना मयूर के पास यह एसेट है, यह गुण है नृत्य, तो नृत्य द्वारा भगवान की आराधना करना, वो प्रसन्न करना चाहता है और भगवान उसके नृत्य को देख करके पूरा पूरा प्रसन्न है। गुरुवंत ते प्रिय, ये शब्द मयूरों के साथ भी लगेगा, ये नृत्य के द्वारा आपका प्रिय कर रहे हैं, हरणिया प्रेम निरीक्षण के द्वारा आपका प्रिय कर रहे हैं, और कोयल मधुर सुक्ति मधुर वचन से आपका स्वागत कर रहे हैं। सुक्त चको की लगड़ा सुर उगत मधुर कंठ है कोयल के पास, तो इसके द्वारा भी आपका स्वागत कर रहे हैं। चकार से और भी जीव हैं जो अपने अपने विशेषता के द्वारा आपका स्वागत कर रहे हैं, यह कहकर के भगवान का धन्य बनाओ का सब। वास्तव में सफल जन्माए वनवासी जीव है, धन्य है, धन्य का अर्थ होता है जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो। धन क्या है, धन है वास्तव में कृष्ण की भक्ति, तो श्री भगवान कहता है आपके प्रति इनका इतना प्रेम है, ये धन्य है। यही स्वभाव सज्जनों का होता है कि अपने घर में आए हुए अतिथि का भी इसी तरह स्वागत करते हैं। नृत्यं तमे शिखिनम् इड्यमुदाहरिण्यः कुर्वन्ति गोप्यैवते प्रियमेक्षणेन सुक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या वनौकशय्याभिशतानि सर्वा। निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव, जन्मजात स्वभाव। निसर्ग सर्ग का अर्थ है सृष्टि और निसर्ग का अर्थ है स्वभाव। यही है सज्जनों का स्वभाव, अपने घर में आए हुए अतिथि का स्वागत करना चाहिए, और वह भी अतिथि शिरोमणि भगवान जिसके घर में आए हैं। भगवान ने यह भी कह दिया मयूरों से या कोयलों से या हरणियों से, वो ये कह रहे हैं कि ये वृंदावन वास्तव में तुम्हारा ही घर है। ये भगवान एक प्रकार से कह रहे हैं, गृह भारत आया, वृंदावन तुम्हारा घर है और मैं आया हूँ अतिथि बन करके हमारा इतना स्वागत करना। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमारे वृंदावन में सब पशु पक्षी पड़े हुए हैं, हमारे घर में रह रहे, इनके घर में मैं आया हूँ। ये भगवान से कहते हैं कि आप इनके घर में अतिथि बन करके आए हैं तो आपका इस तरह से स्वागत कर रहे हैं। धन्य फिर कह रहे धन्य धरणी तृणवीर पाद स्पृश ध्रुमलता कर्जाभिवृष्टा नद्यो द्रय खग मृगा सदयावलोक गोप्यों भुजयोरपिजृहासे। चल रहे भगवान तो अब भूमि की और खग मृग आदि सबकी, पहाड़ की, नदी की, सबकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के चरण कमलों का स्पर्श सबको मिल रहा है, तो सबकी तरफ दृष्टि डाल करके वे कहते हैं, सबको सुना करके। धन्येयमाद्य धरणी इयम धरणी अद्य धन्या, हे देव यह पृथ्वी, यह धरणी जो सबको धारण करती है, सभी जीवों का पालन करती है, यह धरणी आज धन्य हुई है आपके परिभ्रमण से, आज धन्य हुई है। ऐसे इसको आपने बारह देव के रूप में भी उठाया और बामन देव के रूप में इसको अपने नाप अपने चरणों का सौभाग्य दिया, लेकिन आज ही यह धन्य हुई है। जब आप इस पर अपने चरण कमल रख रहे हैं तो धन्य मध्य धरणी, यह धरणी यह पृथ्वी आज धन्य हुई है। तृणवीर ध्वस्त पादस्पृश, और आज ये धन्य हुए हैं तृण विरुद्ध, ये लताएं और छोटे छोटे पौधे धन्य हो गए, ये धन्य हो गए पादस्पृश, क्योंकि इनको आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त होता है। आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके यह धरणी और तृण विरुद्ध सब धन्य हो गए, दुर्मलता धन्य, वृक्ष और लताएं धन्य हो गए इस वृंदावन के, क्योंकि कर्जा विवृष्ट आपके कर्ज आपके नख का स्पर्श इनको मिलता है। आप अपने श्रीनख से फल तोड़ते हैं, ये पुष्प तोड़ते हैं, तो ये वृक्ष और लताएं आपके कर कमलों के स्पर्श से धन्य हो गए, नख के स्पर्श से धन्य हो। कैसे कैसे भगवान कृष्ण ने धन्य किया है वृंदावन के किस चीज को, धरणी को धन्य किया और छोटे छोटे पौधों को लताओं को विरुद्ध जो जमीन पर फैलते हैं, लता तो ऊपर फैलती है, तृण विरुद्ध है नीचे फैलते हैं, ये चरण के स्पर्श से धन्य हो गए, पृथ्वी चरण स्पर्श से धन्य हुई चरण चिन्ह से, और ध्रुव लता वृक्ष और लता है कर्जा विमृष्ट आपके कर्ज नख से अभिमृष्ट हुए, अपने अपने अंगुलियों से और अपने नख से इनका आलिंगन किया है, ये धन्य है वृक्ष और लताएं। नद्योद्रय खग मृगा सदयावलोक, और आपके स्नेहपूर्ण चितवन से नदियां धन्य हो गई। अब जिन नदियों पर अपनी दृष्टि डालते हैं, जमुना जी पर या मानसी गंगा आदि नदियों पर, उपलक्षण से सरोवर आदि पर, इन सरोवरों को आप दृष्टि से देखते हैं तो नदियां अद्र और पर्वत समूह गोवर्धन या अन्य जो पर्वत हैं ब्रज में, इनको आप अपनी कृपा दृष्टि से स्नेह दृष्टि से देखते हैं, और खग मृगा दूर दूर तक उड़ने वाले पक्षी आदि को भी आप स्नेह से देखते हैं, और मृगा पशुओं को सदया वालों के दया के साथ आप देखते हैं, अपना समझ करके कि ये हमारे वृंदावन के हैं हमारे हैं, जिनको आप अपनी दया दृष्टि से देखते हैं तो ये खलमृग भी धन्य हो गए, पशु पक्षी भी धन्य है, गोपियों करें भुजे रपजत प्रियाश्री, और गोपियां भी धन्य हो गए आपके भुजाओं के बीच के स्थान के स्पर्श, अर्थात आपके वक्षस्थल के स्पर्श से, आपके आलिंगन से गोपियां भी धन्य हो गई। जिस वक्षस्थल की स्प्रिया श्री को भी बढ़ाती है, अथवा श्री गोपियों से लक्ष्मी जी भी ईर्ष्या करती हैं, उनको सौभाग्य नहीं मिलता है लक्ष्मी जी को, कि भुजयो अंतरंग भुजाओं के बीच से आपकी गोपियां धन्य हो गई, मतलब वक्षस्थल के आलिंगन से। यह है आवेश किसी चीज में। भगवान बहुत सावधानी से बोल रहे हैं, लेकिन गोपियों की बारंबार चर्चा आ गई, तो बार चर्चा आ गई, कौन किससे धन्य हुआ है, पृथ्वी चरण कमल से धन्य हुई, और तृण विरुद्ध ये सब आपके चरण कमल के स्पर्श से धन्य हुए, और ध्रुव लता वृक्ष और लताएं आपके श्रीनख के स्पर्श से धन्य हुए, वृक्ष के फल और फूल को तोड़ने में लताओं के ये धन्य हुए, और सदय अवलोक से खग मृग धन्य हुए, नदी पर्वत आदि सब धन्य हुए, और आपके वक्षस्थल से गोपियां धन्य। इतना खोल करके वर्णन कर देना कि आपके ऐसे बोल रहे हैं, वक्षस्थल नहीं कर रहे, भुजयो अंत रहेगा, दोनों भुजा के अंत बीच के स्पर्श से गोपियां धन्य हुए, आलिंगन से जत स्प्रिया श्री, जिनके प्रति जिस वक्षस्थल के स्पर्श के प्रति श्री को भी स्प्रिया रहती है, लालसा बनी रहती है, ऐसे आपके वक्षस्थल के स्पर्श से श्री गोपियां धन्य हो गई। भगवान पर प्रेम का ऐसा आवेश छाया हुआ है, उसको भगवान व्यक्त कर ही रहे हैं। यदि यहां जरूरत नहीं थी कि इन वृक्षों को, लताओं को, पृथ्वी को, हरण आदि वृक्ष आदि को सुनाया जाए कि गोपियां ऐसे धन्य हुई, और भगवान अपने अग्रज से बात कर रहे हैं, क्या बलराम जी के वक्षस्थल के स्पर्श से गोपियां धन्य हुई है? तो इसी से समझ लेना चाहिए कि सारी जो उक्ति है इसके तात्पर्य ये परेशान स्वयं कृष्ण ही है, अपना ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इस शिष्ट भाषा में श्री बलराम जी का वर्णन, अथवा इसका एक अर्थ यह भी होता है कि श्री बलराम जी में और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तहर द्वितीय देह श्री बलराम, दोनों एक ही है वास्तव में। इसलिए अभेद विवक्षा से भी श्री बलराम जी के साथ अपना कोई पार्थक्य न दे करके भगवान सीधे वृंदावन के जीवों की सेवा को श्री बलराम जी पर आरोपित करते हैं। और यह है भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वभाव, प्रेम परवशता। एक तो बलराम जी प्रति जो बात कर रहे हैं, तो भगवान की शिष्टता ये प्रकट है, किस तरह से श्री कृष्ण अपने से श्रेष्ठ लोगों का आदर करते थे, और यह भी दिखाया गया है कितना भी प्रेम के अधीन है, कितना प्रेम के अधीन है कि अपने अग्रज बलराम जी के सामने भी उनके मुख से निकल गया कि गोपियां वक्षस्थल से धन्य है, मतलब भगवान गोपियों का आलिंगन करते हैं तो ये धन्य है, वो सुखी है, किसी का चरण से, किसी का हाथ से। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए ये कह दिया गया कि पृथ्वी चरण कमल के स्पर्श से धन्य हुई है, इसका अर्थ ही नहीं कि हस्त कमल का स्पर्श उसको नहीं है, या पूरा श्रीअंग का स्पर्श नहीं है। पृथ्वी पर तो भगवान लौटते भी थे, खाते थे, खेलते थे, नहाते थे, और हाँ ये बात है कि सुदूरवर्ती आज प्रथम दिन की बात है कि दूर में जो पहाड़ हैं जहाँ श्री कृष्ण आज नहीं गए गौरों को लेकर के, तो किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ कर उन पर्वतों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, तो आज इतना अर्थ हो सकता है कि हाँ भगवान उनको धन्य किया अपने नयन कमल की दृष्टि से देख करके, नेत्रों से देख करके धन्य किए, लेकिन वास्तव में सबको तो सब तरह से धन्य किए। वे मयूरों को उनका भी स्पर्श करते थे, वो चारा चुगाते थे, और पक्षी भी आया करके भगवान के पास सट कर बैठ जाते थे। हरिणियां बिल्कुल निकट चलती थी कृष्ण के, कृष्ण उनका कदे सहलाते थे, बिल्कुल साथ साथ चलते थे। भगवान चैतन्य अपने जब वृंदावन में गए तो ठीक अपनी वही लीला चालू किए वनवासी पक्षी और पशु आदि के साथ। हरिणियां भगवान चैतन्य महाप्रभु के श्रेयों को चाटती थी और निकट से वो सहलाते थे, और वेणु गीत को श्लोक की याद करने लगे जिसमें हरिणियों का वर्णन किया गया है। वृंदावन में स्वभाव से ही किसी जीव में वैर नहीं रहता, प्रेम रहता है दूसरे के प्रति। तो भगवान श्री कृष्ण किस तरह से विज्ञापन दे रहे हैं, अपने अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं वृक्षों के प्रति या हरणों के प्रति या किसी के प्रति। इसे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर हम लोगों के भाव को समझते हैं। कोई व्यक्ति उन्हें प्रेम से तुलसी का पत्ता भी देता है, जल देता है, कुछ अर्पण करता है, और कुछ नहीं हो तो केवल गा रहा हो, केवल गावे भी नाचे भी, प्रेम से दर्शन करे भगवान का, कृष्ण की तरफ देख के अर्चा विग्रह, जैसे जगन्नाथ जी हैं या कृष्ण बलराम हैं गौताए, इनको केवल देखे भी व्यक्ति अगर अपने पास कुछ नहीं है, केवल दर्शन भी करे तब भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इन सब क्रियाओं से अलग अलग हम लोग अपने जीवन में सीखना चाहिए कृष्ण के चरणों के आसपास कृष्ण की दृष्टि में आना। तो कृष्ण की दृष्टि में आना ऐसे बिल्कुल स्वाभाविक है, भले मनुष्य का ध्यान कहीं भी हो सकता है परिवार का चिंतन हो रहा हो या ऑफिस का या विद्यालय का है कहीं भी, लेकिन वो मंदिर में आ जाए केवल, उसका मन कहीं भी हो तो भगवान उसे देखते हैं, स्नेह से उसको देखते हैं। आपने सुना होगा कि एक बार स्नेह से गंधारी ने दुर्योधन को देखा, जंगल पहन करके आया था तो उतना अंग वज्र नहीं हो पाया, लेकिन गंधारी ने स्नेह से अपने पुत्र को देखा तो उसका सारा शरीर वज्र जैसा कठिन हो गया। वहां पर भीमसेन गदा मारते थे तो गदाएं टूट जाती थी, शरीर भंग नहीं हुआ, अंग जान हुआ जब मारे तो जान भंग हुआ। इस प्रकार एक व्यक्ति के देखने से, एक सामान्य स्त्री के देखने से उसके पुत्र में इतना बड़ा बल आ सकता है। और शास्त्र ये भी कहता है कि मछलियां अपने अंडे को देखती हैं, देखने से वो पुष्ट होता है, कभी छूती नहीं है, और पक्षी अपने अंडे को पंख की छाया से और अपने पंजे से अपने पैर से छू छू करके बड़ा करते हैं, कुछ इंजेक्ट नहीं करते, भीतर कुछ डालते नहीं है, केवल छूते हैं प्रेम से स्नेह से और पंख की छाया करते हैं, सहलाते हैं, और मछलियां केवल देखती हैं। और कछुआ बच्चों की जो माँ होती है वो केवल स्नेह से कछुए अपने अंडे का स्मरण करती है दूर से, तो अंडे बढ़ते रहते हैं, स्मरण का इतना प्रभाव। तो मंदिर में यदि भगवान के सामने कोई व्यक्ति आए और भगवान उसे देखेंगे तो उसके जीवन में दुर्भाग्य रह ही नहीं सकता है, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य को चाहिए कि वो मंदिर में जाकर कृष्ण को देखे, जगन्नाथ जी को देखे। आज की दुनिया में लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा पाप है पहले का, लोग सिनेमा जाते हैं देखने के लिए, इधर उधर थर्ड क्लास के दृश्य देखने जाते, भगवान को देखने नहीं जाते। भगवान के दृष्टि का वर्णन किया गया है सदैव, खग मृग सदैव लोग, श्री कृष्ण परम स्नेह से आत्मीयता के साथ किसी जीव को देखते हैं। उनके घर में कोई जाता है, उनके मंदिर में कोई जाता है, वो स्नेह से देखते हैं। जिसको भगवान स्नेह से देखेंगे उसके जीवन में कैसे दुख रह सकता है, उसके जीवन में स्वभाव ही स्वभाव रखते, नियम बना करके और नित्य भगवान का दर्शन करना चाहिए। और अपने घर पर भी भगवान का फोटो रखे या मूर्ति रखे तो देखना, और कोई भी गुण हमारा कोई गाना भी नहीं जानता है और गरीब है, पैसा भी नहीं है भगवान को अर्पण करने का, तो भगवान को देखने में क्या दिक्कत है? देखना चाहिए, देखने से कल्याण होता है सब। इस तरह भगवान अपने श्री अंगों के द्वारा, श्री चितवन के द्वारा, श्री हस्त के द्वारा, श्री नख के द्वारा और श्रीपद के द्वारा, श्री वक्षस्थल के द्वारा सबको धन्य किए हैं। इसके द्वारा भगवान मानो इस सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान का अंग नित्य है, दिव्य है, अप्राकृत है। कहाँ है निराकार विचार और उसका आधार क्या है? केवल मूर्खों की भावना है वास्तव में। भगवान निराकार है, निराकार शैतान कहीं। कहाँ से पता लगाया कि भगवान निराकार? किसी से पूछिए कि कहाँ से पता लगाया भगवान निराकार? केवल यही को हम देखे नहीं, देखे नहीं तो इसे क्या, बहुत चीज नहीं देखे हो, स्वर्ग नहीं गए हो तो इसे तो स्वर्ग नहीं है, या नरक नहीं गए तो नरक नहीं है, है ना? कोई व्यक्ति जेल कभी नहीं गया होगा तो कहेगा हम जेल नहीं मानते हैं, क्यों? हम देखे नहीं, देखे नहीं हो तो दूसरे लोग देखे हैं ना। भगवान के श्री अंगों का कितना स्पष्ट वर्णन किया जा रहा है और उसके तत्त्व प्रभाव का भी वर्णन, यह श्रीमद् भागवत। भगवान श्री कृष्ण ही सार है, उन्हीं में गति मति रहे, उन्हीं में सब कुछ रहे, यही जीवन की सफलता है। हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पद गाते हैं कि कृष्ण ही कैसे सार है। पद है श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठ जाम विभवन श्याम ही सोतन है, आठ जाम विभवन श्याम ही सोतन है, श्याम ही श्याम जी श्याम बिन नहीं किए, आंधे की से लतरी आधार श्याम, श्याम मति श्याम गति श्याम ही है प्राणपति, श्याम मति श्याम श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख दाई सुख भलाई शोभा धाम, विधो कुमार भय बौर पाती लेके आए बौर, जोग कामा रखिया रोम रोम श्याम है, जोग कामा रखिया कहते हैं कि हम जोग कहाँ रखें, पत्र लेकर के आए हो जोग कराने, तो रोम रोम में श्याम बसा हो, जगह ही नहीं है ये जोग सीखने की, कहाँ रखें? उधो तुम भय दौरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ रखें हम रोम रोम श्याम। श्रीमद् भागवतम के द्वारा यह बिल्कुल क्लियर उत्कृष्टतम विचार भाव मिलता है, इसको कृष्ण भावना मृत कहते हैं। सब जगह रोम रोम में, आंख में, कान में, मन में, हृदय में कृष्ण ही छाया रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के शब्दों में यह शक्ति है। स्पेशल भगवान के व्यास देव ने इसकी रचना किया कि लोग कृष्ण भावना भावित हो, और श्रीमद् भागवतम को सुनने की जितनी परंपरा है, प्रथा है, और किसी ग्रंथ को इतना सुनने की परंपरा नहीं है। आज भी भले जिस रूप में हो लेकिन लोग भागवत ही सुनना चाहते हैं। आज आत्माराम प्रभु कह रहे हैं महाराज भागवत ही कहिए, भागवत ही कहिए, हमको कह रहे थे। और दोनों टाइम भागवत कहने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे चैतन्य चैतन्य भी भागवत ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। चैतन्य चैतन्य बल्कि कुछ माने में और ज्यादा सरस है। प्रैक्टिकल भक्ति जो दिया गया है भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु का व्यवहार और भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख से सिद्धांत अद्भुत। इस तरह इन शास्त्रों के आश्रय में रहकर हम लोग अपनी कृष्ण भक्ति का वर्धन करना भगवान जगन्नाथ देव ऐसी सुविधा हम सबको दे कि हम सबकी भक्ति बढ़े। हरे कृष्ण जय श्री लक्ष्मी
जय श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज की जय श्री प्रभुपाद की ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की बल जगन्नाथ स्वामी की बलदाव जी महाराज की सुभद्रा सुदर्शन देव की स्वामी भक्त वृंद की गौतम आनंद।